नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। तो आज के इस 4 सितंबर के दिन श्री द्वारका इस्कॉन मंदिर में आप सबका श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार, इसमें से श्लोक क्रमांक 20 पढ़ रहे हैं। अप्रत्यर्क्यात् अनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपं राजऋषे सॉरी निश्चयः अत्र अनुरूपं राजऋषे विमृश स्व मनीषया। अप्रत्यक्यार्थ अनिर्देश्याद् इति केश्वापि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। अप्रत्यर्क्याद् अनिर्देश्याद् इति केश्वापि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। बोलिए। अत्रानुरूपं राजर्षे माताजी एनीबडी अप्रत्यक्षकृत अनिर्देश्याद् इति केश्वापि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। अप्रत्यर्क्यात् तर्क शक्ति से परे, अनिर्देश्यात् चिंतन शक्ति से परे, इति इस प्रकार, केशु कोई, अपि भी निश्चयः निश्चित रूप से, अत्र यहाँ पर, अनुरूपम, उनमें से सही उचित। राजर्षे, हे राजर्षि। विमृश, अपने आप निर्णय लो। स्व, अपनी। मनीषया, बुद्धि की शक्ति द्वारा। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से ही ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। वैष्णव मत अवलंबी अर्थात भगवान भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि भगवद गीता 15.15 में वे पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी भी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। इसका इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुजी? यहाँ पर नास्तिकों का खंडन इस प्रकार। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया है वो भूल सकता है, लेकिन हमें जान देना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में निवास करते हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतएव परमात्मा जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसे पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव वो सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म प्रत्येक के हृदय में स्थित और अंतर्यामी परमात्मा है। ये समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता है, उनमें कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता उनसे। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव फल की आकांक्षा न रखते हुए अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे किसी को कष्ट में डालते हैं और किसी को नहीं? वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता है और इस तरह वास्तविक वेदांती है, साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है, हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों के किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता वे सब परम सत्य के पथ पर रहते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था, अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर ये सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली बातें जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति दो स्तंभों यानी कि गाय तथा ब्राह्मण, पृथ्वी तथा धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरी तरह वश में है। वे जब किसी द्वारा कोई नाम काम करना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। जो वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं, मतलब भगवान, तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार भगवान परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसका हल कैसे करते हैं। सबको समझ में आया इसमें क्या लिखा है? ये हिंदी अनुवाद जो है ना, बहुत क्लिष्ट है। मैंने सब अंग्रेजी में पढ़ा था इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत धन्यवाद है, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। श्रीमद् भागवत कभी कभी समझने में बहुत क्लिष्ट लगेगा, क्लिष्ट, लेकिन श्रीमद् भागवत ही हमारे जीवन के ज्ञान का सार है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत ऐसा ज्ञान है जो अमलम पुराणम, यानी इसमें कोई मल नहीं है, कोई त्रिगुण का प्रभाव नहीं है। जो भी बातें यहाँ पर की गई है वो सारे सत्व रज और तम गुण के परे की बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, त्रिगुणातीत बातें हैं। इसलिए ये कितना भी क्लिष्ट लगेगा फिर भी हृदय से उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर खुद समझ में नहीं आता है तो किसी को पूछकर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रसंग ऐसा है कि परीक्षित महाराज अपनी रात्रि गश्त पर है, हाँ विजिलेंस, रात को घूम रहे और दिन में घूम रहे पता नहीं, लेकिन अपने प्रजा में वो राजा घूमते थे पुराने ज़माने में, कभी वेश बदल कर, कभी ऐसे ही, लोगों का मंतव्य क्या है समझने के लिए, प्रजा की स्थिति को समझने के लिए। आज तो बाहर निकल ही सकते नहीं, क्योंकि आज निकलेंगे तो फिर उनको गोली मारी जाएगी, बॉम्ब डाला जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि राजा होते हुए भी वो इतने अप्रिय हैं लोगों के लिए, इतने दुश्मन हैं उनके लिए, तो वो बाहर निकल ही सकते नहीं सुरक्षा कवच के बिना। और हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान, अम्बरीश महाराज, अर्जुन स्वयं जाते थे लोगों के बीच में। तो परीक्षित महाराज उस तरह के विजिलेंस में हैं और उनको नज़र आता है कि एक बैल खड़ा है, गाय खड़ी है, और एक ऐसा राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति, राजा जैसे वस्त्र पहना हुआ, गदा से वो बैल के तीन पैर वो नुकसान कर चुका है और एक पैर पर बैल लड़खड़ा रहा है और गाय माता भी रो रही है, उस स्थिति में वहाँ पहुँच जाते वो। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जो बैल थे वो साक्षात धर्म है, धर्म पर्सोनिफाइड है, हाँ व्यक्ति रूप में धर्म वहाँ पर प्रकट हुए हैं, और गाय जो है वो माता के रूप में प्रकट है, धर्म माता, साथ में वो पृथ्वी का भी प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे पतात्पर्य में भी लिखा है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सीन है। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर अंतर्धान हो गए, लीला समाप्त करके, उसी दिन कलयुग का आगमन हुआ, कलयुग शुरू हुआ। प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा लेकिन धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा। तो अभी ये साक्षात प्रकट हो रहे हैं कलयुग, और धर्म जो है वो चार तत्वों पर आधारित है, तार उसको कहते हैं, चार खंभे हैं उसके, फोर पिलर्स। एक है दया, दूसरा है तपस्या, तीसरा है सत्य, और चौथा क्या है, पवित्रता, शुद्धि, शुचि। इन चार तत्वों पर धर्म आधारित है और बाकी सारे तत्व भी हैं जो धर्म को आधार देते हैं, लेकिन ये चार प्रमुख स्तंभ है उसके, और इस पर गहरा विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे इस्कॉन में वो मांसाहार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो दया के विरुद्ध है, किसी का निर्दयता से वध करके उसका मांस ग्रहण करना, उसको मारकर, उसको मृत्यु की वेदना देकर, उसको असह्य वेदना देकर, उसको मारकर उसका मांस ग्रहण करना, ये उसका एक स्थूल परिणाम है, मतलब ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जो आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन निर्दयता जो है वो कई प्रकार की होती है, मानसिक स्तर पे होती है। हमारे पत्नी के साथ में हम बहुत क्रूरता से बात कर सकते हैं, पत्नी हमसे क्रूरता से बात कर सकती है, या आपका पड़ोसी आपसे बहुत वेदनामय रूप में बात कर सकते हैं, इंसल्टिंग वे, डिमीनिंग वे, मतलब घिलौनी बातें कर सकते हैं, ये भी निर्दयता है। निर्दयता केवल मांस खाने में नहीं है, मांस खाना एक निर्दयता का बहुत बड़ा परिणाम है जो समाज में दिखाई पड़ रहा है, और वो मांस खाने से निर्दयता बढ़ती है, निर्दयता से मांस ग्रहण होता है, और वो मांस का ग्रहण करने से जो निर्दयता का फल है और निर्दयता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से शुचि व्यभिचार करने से नष्ट हो जाती है। व्यभिचार समाज में आजकल इतना उसका प्रादुर्भाव है, इतना व्यभिचार, लोग कितने प्रकार का व्यभिचार करते हैं, सबसे ज़्यादा हृदय का अशुद्धि जो है वो इससे प्रकट होती है। अभी व्यभिचार फिजिकली शरीर से रूप से करना ये एक उसका स्थूल स्वरूप है, फिर उसका विचार करना, उसके बारे में योजना करना, उसके बारे में सोचना, उसको देखना, उसके बारे में प्लानिंग करते रहना, संकल्प करते रहना कि मैं करूँगा ऐसे ऐसे, मन में जो चलता है वो भी व्यभिचार है, वो भी चेतना को अशुद्ध कर देता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये उसके बाद में सत्य जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया धन संपत्ति जो है उसको भगवान के अलावा किसी चीजों में उड़ा देना, उसको स्क्वांडर, तो सत्य नष्ट होता है, उसको द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। तो केवल पैसे लगा के कुछ खेल खेलना यानी उतना ही नहीं है, वो तो अगेन वो उसका एक स्थूल बहुत बड़ा परिणाम है उसका, कि हम बैठे हुए हैं और जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलते हुए कोई सत्य बोल सकता है क्या? बोल सकते हैं? नॉट पॉसिबल। असत्य का राज्य है वहां पर, सत्य का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जब हम बिजनेस में चीटिंग करते हैं, नहीं हमारा ये माल बहुत अच्छा है, फ्रेश है एकदम, बोलते हैं ना सब ऐसे, सबसे बेस्ट क्वालिटी कपड़ा है, इंग्लैंड का है, ये फॉरेन का है, ऐसा है वैसा है, ये भी असत्य को बढ़ाता है और इससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। और लास्ट क्या बताया आपने? शुद्धि हो गया, असत्य हो गया, हाँ तपस्या। तो मनुष्य जीवन जो है वो एक ही जीवन तपस्या के लिए, बाकी कोई जानवर, कोई पंछी, कोई कीड़ा मकोड़ा, मछली, पेड़ तपस्या नहीं कर सकता है, कोई नियम का पालन नहीं कर सकता है, यम नियम कोई पालन नहीं कर सकता है, विधि निषेध का पालन नहीं कर सकता है, केवल मनुष्य के लिए है वो। और वो तपस्या की शक्ति जो है, जो हमको दी गई है, एक पूंजी हमको दी गई है कि भाई आप इतना तपस्या का पालन कर सकते हैं, वो शक्ति नशा करने से नष्ट हो जाती है। किसी प्रकार का नशा आप करेंगे तो आपके धीरे धीरे ज़्यादा या कम स्तर पर नियम पालन करने की जो आपके अंदर शक्ति है, प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे संप्रदाय में चाय कॉफ़ी तक हम सेवन नहीं करते हैं। लोग कहते हैं चाय कॉफ़ी में क्या है इतना, व्हाट इज चाय कॉफ़ी, लेकिन उसको ना पीकर देखो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है उसके। पीने से कुछ नहीं होता है, आपका नशा करके झूम रहे हैं रस्ते में, गालियाँ बक रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कुछ। लेकिन जब चाय वाला आदमी चाय नहीं पिएगा तो उसको पूछो क्या क्या होता है, उसका सर दुखता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उसको इरिटेबिलिटी होती है, उसको कुछ अजीब सा लगता है बहुत सारा, और सबसे ज़्यादा परिणाम उसका होता है उसको सुबह लैट्रिन नहीं होती है ये भी होता है, कंडीशनिंग बोलते हैं उसको, प्री कंडीशनड एक्टिविटीज़। तो वो पता चलता है कि उसकी वो नशा है, वो शरीर को निर्भर, वो चाय का निर्भर बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है। तो ये चार स्तंभ जो है वो इन चार जो निषेध है हमारे, है ना, मांसाहार वर्ज, नशा वर्ज, व्यभिचार वर्ज और जुआ वर्ज, ये चार जो हमारे निषेध है उसका आधार स्तंभ है वो विधि है वो, एक्चुअली वो चार चीजों को हमारे अंदर जब हम बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन करेंगे और भगवान की प्राप्ति आगे कर सकने की संभावना है। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये चार नियम पालन करने से हम सब लोग पहले तो इंसान बन जाएंगे। इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट है ये, बोले क्या मैं इंसान नहीं हूँ, चाय पीता हूँ तो इंसान नहीं हूँ ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये सच बात है। ये चार नियमों को पालन करने के बाद में आपके हृदय में मन में ये दया और तपस्या सत्य और शुद्धि बढ़ेगी आपकी हमारी, और तब जाकर हम भक्ति के विषय में सोचने के योग्य हो जाएंगे। वो जीरो लेवल है। तो हम लोग अभी हमारी हरे कृष्ण संस्था में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो नए नए आते हैं, हम तो चाय भी नहीं पीते, हम चाय भी नहीं पीते, हम चाय भी नहीं पीते, इतना जप करते रहते हैं, जब आए वो सबको मेहमान को बताते हैं हम चाय भी नहीं पीते, चाय भी छोड़ कर रखा है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये तो केवल जीरो लेवल पे आना है, आगे तो मंदिर बहुत दूर है। इसी जैसे कि हम लोग फाउंडेशन डालते हैं ना बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग थोड़ी बनी होती है, बिल्डिंग तो उसके ऊपर बनेगी, फाउंडेशन के ऊपर तो जमीन के अंदर रहता है वो दिखता नहीं है। तो ये फाउंडेशन है, ये उसका बेस है। रूपा जी भी हर 6 महीने में लोगों को पूछते थे, आप मानते हो ना कि भगवान है? हर 6 महीने में पूछते थे। आप कह रहे बार बार क्यों पूछ रहे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मन में कहीं भी अभी भी डाउट है कि भगवान है कि नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा आदमी? अमेरिका का टिकट निकाला है, अमेरिका का वीज़ा निकाला है, अमेरिका का बैग भर दिया है, सब कुछ कर दिया है, फिर पूछ रहे मन में शंका है कि अमेरिका है ना, मतलब हमारा विमान अमेरिका में उतरेगा ना, अमेरिका नाम का जगह कोई है वो है ना? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो बोलेगा अरे पहले पता कर लो कि श्रद्धा है कि नहीं जहाँ जा रहे हो। तो वैसे ही आपको लगता होगा कि अरे हम तो कई साल से जॉब कर रहे हैं, भक्ति में है, चार नियम की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो पालन कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन चार नियम एक बहुत ही गहरा विषय है, हम लोग उसका एकदम स्थूल जो चीज़ है ना उसको पालन कर रहे हैं। हाँ यस, मांसाहार नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते, चाय कॉफ़ी नहीं पीते, बस विवाह कर दिया है तो और किसी का संबंध हमारा नहीं है, और हम जुआ नहीं खेलते किसी प्रकार का। लेकिन ये बहुत स्थूल बातें हैं, और गहरी बातें इसके अंदर है कि यस हम लोग जुआ नहीं खेलते, लेकिन हम लोग बिजनेस में लोगों को चीट करते क्या, गलत बातें बताकर माल बेचते क्या, या क्या हम हमारे नौकरी में जब काम कर रहे हैं तो काम चोरी करते हैं क्या, वो भी असत्य का ही लक्षण है, इट्स साइन ऑफ बीइंग अनट्रूथफुल। तो यहां पर यहां तक हमको फॉलो करना है, जब हम इस नियमों को इस स्तर पर फॉलो करेंगे ना तो उसका सही लाभ आपको मिलेगा, और उसके आपको जैसे ना स्प्रिंग बोर्ड आपको उसका एक बाउंस मिलेगा उससे, और उससे बहुत गति से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना करुणा और दया, वो केवल मांस न खाने तक रुकती नहीं है वो चीज, बाकी लोगों पर भावनिक स्तर पर भी हमला नहीं करना चाहिए। अरे आप पत्नी का खून नहीं कर रहे हो लेकिन पत्नी को ऐसी बातें बोल रहे हो कि उसको खून लगता है कि आत्महत्या कर लूं मैं, तो वो मांस खाने से भी बहुत भयंकर चीज है। हाँ, हमारे बच्चों को जब हम डांटते हैं तो भी एक हत्या की तरह है, भावनिक हत्या है वो, किसी को कठोर वचन बोलते हैं। आप बताइए मुझे, किसी को शस्त्र चलाना ज्यादा दर्द वाला है, किसी को कठोर वचन बोलना अधिक दर्द वाला है, बताइए आप मुझे। आपने कभी शादी के पहले महीने में कुछ बोला था, वो मरते दम तक वो डेथ बेड पर भी याद करेगी वो, कि आपने मुझे ऐसे बताया था जब मैं आई थी नए घर पे, क्योंकि वो चोट जो है वो ज्यादा गहरी है उससे। वो हमारे पास रहते कितने केसेस हैं कि मैं जब नई दुल्हन बन के आई थी तो मेरे सासू जी ने सारे गहने मेरे से ले लिए और अपने कवर्ड में बंद कर दिए, आज तक झगड़ते हैं वो 30 साल के बाद भी कि तुम्हारे मम्मी ने ऐसे क्यों किया, मतलब इतनी चोट पहुंची उसको। वो गहने को कोई कोई लेके जाना नहीं है अपने साथ में, ना सासू ना बहू, लेकिन वो चीज जो दर्द देने वाली है वो जब हमने निर्दयता से बिना सोचे की है, उसका दर्द जो है ना बहुत देर तक रहता है। अगर मैंने आपको चाकू से काट दिया 1 महीने के बाद वो हील हो जाएगा, लेकिन वो आपको मैंने वो शस्त्र लगाया उसका दर्द जो है वो जीवन तक चलेगा, एंड तक चलेगा ना, कि ऐसा मुझ पर उन्होंने हमला किया था, आज उसका निशान भी नहीं है। तो वो जो आत्मा और हृदय और मन के स्तर पर जो घर जो क्या कहते हैं हिंसा होती है ना, हिंसा, उसको बचाने को सीखना चाहिए हमको। मंदिर में हम लोग रहते हैं, हाँ कितने लोग साथ में रहते हैं, तो कोई किसी को कुछ बोल देता है, फिर प्रेसिडेंट आके कुछ डांटता है, फिर ऐसे कुछ होता है, फिर वैसे कुछ होता है, फिर किसी को निकाल देते हैं, किसी को किस चीज़ पर बोलते हैं, लेकिन उसमें सेंसिटिविटी कम होगी और केवल शासन अधिक होगा तो दर्द जो होगा वो आदमी कभी भूलेगा नहीं, उसको कहते हैं बर्नआउट। जब वो ऐसा बर्नआउट होता है ना, व्यक्ति परेशान हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है वो आदमी, वही दर्द की याद करता है जो दर्द हुआ था। तो ये हिंसा जो है केवल किसी को न मार कर खाने तक सीमित नहीं है, हिंसा जो है वो हर स्तर पर होती है। आध्यात्मिक स्तर पे भी हिंसा होती है। जब मैं आपकी श्रद्धा का खंडन करता हूँ तो आध्यात्मिक हिंसा है। समझो कोई शिव जी का भक्त है, तो गणेश जी का भक्त है, भाई गणेश जी का चतुर्थी आने वाला है, कल है ना टुमारो, हमारे मुंबई में कल से है, तो अगर आप उसका श्रद्धा का खंडन करोगे तो उसकी वो आप हत्या कर रहे हो, उसकी आप हिंसा कर रहे हो उसके ऊपर। भगवान भी स्वयं बोलते हैं कि किसी को अगर देवताओं पर श्रद्धा है तो उसकी श्रद्धा का खंडन नहीं करना चाहिए, आपको आदर करना चाहिए, तभी वो आपकी श्रद्धा का आदर करेगा। नहीं तो वो आपको कृष्ण को भी ऐसे ही बोलेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि भावना के स्तर पर हिंसा, शरीर के स्तर पर हिंसा, मन के स्तर पर हिंसा, धन के स्तर पर हिंसा, किसी को फाइनेंशियली चीट करना, कोई अच्छा खासा आदमी है उसको चीट करके आपने कंगाल बना दिया, एकदम गरीब बना दिया, कर्ज वाला बना दिया, वो फाइनेंशियल हिंसा हो गई आपकी। कितने लोग करते हैं, लोगों को जितना चीटिंग करते हैं, जेल में पड़े हुए वो लोगों का धन ले लेकर कहाँ डाल के फिर चीट करके भाग रहे हैं। कितने लोगों को कंगाल किया होगा, कितने लोग भिखारी बन गए होंगे उसकी वजह से, किसी व्यक्ति ने धन का गड़बड़ कर दिया। तो इस सारी प्रकार की हिंसाएं जब हम छोड़ देंगे तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर दया का विकास हो रहा है। वो दया का विकास होए बिना भक्ति की प्रगति नहीं हो सकती है। जब तक हमारे मन में हमारे साथ जीने वाले जितने जीव हैं, मनुष्य है, पक्षी है, प्राणी है, हाँ, उनके प्रति वो प्रेम दया नहीं आती है, तब तक हम कैसे भगवान की ओर प्रगति कर सकते हैं। आते जाते अगर हम कुत्ते को लात मार रहे हैं, कुत्ता आया तो बेरा मतलब कि डंडा मार रहे हैं उसको, समझो हमको वो अभी तक तकलीफ नहीं दे रहा है, दूर है वो, तो उसके पहले से हम उसको मारने लगते हैं क्योंकि तो जानवर है वो, है ना। गाय को डंडा मारते हैं कोई सफर रास्ता में बेचते हैं ना फल वल, ये सभी हिंसा है। और जब तक वो जीव के प्रति हमको वो आदर नहीं निर्माण होता है तब तक वो हिंसा हम चाल नहीं सकते हैं। हम भले ही धोती कुर्ता पहनकर वही सालों से भक्त बनकर शायद जप करते होंगे, एकादशी का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास करते होंगे, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि क्या जाने अनजाने में हम लोग किसी को दर्द दे रहे हैं क्या हमारे व्यवहार से। और ये अधिक तकलीफ तब होती है जब हम किसी पद पर जाते हैं, कोई हम अधिकारी बन जाते हैं तो हमारे अंदर अधिक ज़्यादा पोटेंशियल होता है किसी को दर्द देने का। एक सामान्य आदमी की शक्ति जो है किसी को दर्द देने की वो बहुत कम होती है। जैसे कोई पोजीशन नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई विद्या नहीं है, वो सुरक्षित रहता है एक दूसरे से, उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है बहुत लोगों को दर्द देने का। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो एक साइन करेगा पेपर पर तो पता नहीं कितनी लाखों लोगों को दर्द दे सकता है वो। हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने 1964 में वो एबॉर्शन का कायदा साइन किया था कि इसके आगे गर्भपात बकायदा मतलब कायदे से होगा, हो सकता है। उसके बाद में आज की तारीख में ये पुराना रिकॉर्ड, आज का रिकॉर्ड नहीं है, पुराना रिकॉर्ड कहता है कि दिन में 35,000 बालकों का वध होता है गर्भ के अंदर, गर्भपात के रूप में 35,000। पेपर में आता है कभी कि आज 35,000 के बदले में एक कम हो गए 34,999 का देहांत हो गया, ऐसा आता है पेपर में? नहीं आता है। तो एक कायदा एक दिन उन्होंने साइन किया, उसकी वजह से 1964 के बाद आज तक 42 साल में हर दिन में 35,000 से अधिक बालकों की हत्या हो रही है गर्भ के अंदर। कितने जीवों को दर्द पहुंच रहा है आप सोचिए। कुछ लोग सोच के करते होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होता होगा। आप देख सकते हैं बड़ा आदमी के अंदर एक अपने एसी कमरे में बैठकर शांति से एक साइन कर रहे हो, लेकिन वो उसकी जो एक साइन है वो लाखों लोगों के दर्द का कारण है, उसका पीड़ा का कारण है। तो हमको सोचना चाहिए कि हम अगर किसी किस तरह के अधिकारी हैं, हम कोई हमारे पास कोई अधिकार है, कोई शासन में हम नियंत्रक हैं, तो हम ज़्यादा दर्द लोगों को पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमारे को बताया जाता है कि जब हम किसी पद पर जाते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अभी ये शक्ति ज़्यादा है तो हमको सोच समझ कर ये ना हो इसका प्रयास करना चाहिए कि मेरे किसी निर्णय से, किसी डिसीजन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और होगा तो मैं समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो वो कष्ट होने पर भी कष्ट महसूस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपका हमारा प्रेम है और हमने आपको डांट भी दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा कोई प्रेम वेम संबंध नहीं है और आपने डांट लिया तो बहुत अधिक दर्द होगा। लाइन वही होगी, चार विद्यार्थियों को डांट लिया तो चार विद्यार्थियों को अलग अलग दर्द होगा उसका, वो हमारे रिश्ते पर आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कई सालों के बाद में फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी किसी को दर्द भावना में भी नहीं दे रहा हूँ और धन से भी नहीं दे रहा हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोलता और जितना हो सके सत्य बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुन जन्माष्टमी के लिए कलेक्शन कर रहे हो, तो पहले ज़माने में हम लोग एनीथिंग वी वुड से कि हम लोग यहाँ पर धन बांटते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, वहाँ पर ऐसा करते हैं, किसी भी प्रकार ये नहीं कहना प्रकार है ना उनसे पैसा लेना है और जन्माष्टमी में लगा देना है। बाद में हमको बताया गया कि आप जो बता रहे हो उसी के लिए उसका पैसा, वो पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फूड फॉर लाइफ के लिए वो मांग रहे हो तो वो फूड फॉर लाइफ में ही जाना चाहिए, पुष्प अभिषेक की पुष्प के लिए जाना नहीं चाहिए। आपने उसमें क्या है तो भगवान की सेवा, उसको लाभ तो मिलने वाला है, लेकिन समझो उसको समझ में आया कि आपने किताब वितरण के लिए या प्रसाद वितरण के लिए पैसा दिया और वो उसको पता चला कि उन्होंने फूलों के लिए इस्तेमाल किया, तो जिंदगी भर आपका वो श्रद्धा टूट जाएगी उसकी। ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। या तो आपको बोलना चाहिए प्रभु जी इस बार तो मैं आपको पुष्पांजलि के फूलों के लिए आया हूँ, श्रद्धा है तो दे दो, तो ठीक है, और वो जो कहा है वहीं पर वो पैसा जाना चाहिए। यहाँ तक असत सत्य को हमको पालन करना है, ऑनेस्टी को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में जो पैसा आएगा भगवान की सेवा में ही जाएगा, कोई नशा करने में या व्यभिचार पाप करने में नहीं जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ से वहाँ गया तो। लेकिन फर्क पड़ता है जिस व्यक्ति ने आपकी बातों को सुनकर श्रद्धा से दिया है, उसको फर्क पड़ता है, उसकी श्रद्धा को आप तोड़ रहे हो, जब उसको पता चलेगा तब जिंदगी भर का दुश्मन बन जाएगा वो, और ना केवल आपको कोसेगा संस्था को कोसेगा पूरी तरह से कि ये देखो इस कौन से आया था। क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो ऐसे हमारा मेडिकल कैंप में देते हैं, तो मेडिकल कैंप के लिए पैसा मांग कर हम उसको मंदिर में नहीं दे सकते हैं, उसको मेडिकल कैंप में यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक कि मेडिकल कैंप में अगर आई कैंप के लिए दे रहे हैं वो, तो वो आई कैंप के लिए यूज़ करना चाहिए और कहीं यूज़ नहीं करना चाहिए, कैथ लैब में यूज़ नहीं करना चाहिए। इतना ऑनेस्टी भक्तों के अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसका ये तत्व का पालन कर रहे हैं। केवल मांसाहार नहीं करने से सब खत्म नहीं होता है, केवल जुआ नहीं खेलने से हम सत्यवादी नहीं बन जाते हैं। हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर जगह पर हम लोग काम चोरी के द्वारा चीटिंग कर ही रहे हैं। मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन होने के बाद भी आपको दिया हुआ सेवा आप लोग शायद नहीं करेंगे, सो जाएंगे, बाद में बोलेंगे नहीं हुआ प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा था, ये भी चीटिंग है। और यहाँ पर भी हमारा सत्य का नाश हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जुआ न खेलने से हमारा सत्य नहीं बढ़ता है, केवल मांसाहार न करने से हमारे अंदर की करुणा और दया नहीं बढ़ती है, वो तो एक फर्स्ट स्टेप है, आगे मंदिर बहुत दूर है इन चीज़ों को पालन करने के लिए। इसलिए हमको इन चार तत्वों के द्वारा जो हम शुरुआत करते हैं, पता होना चाहिए कि हमको सत्य को हमारे अंदर बढ़ाना है हर स्तर पर, शुचि को बढ़ाना है हमारे अंदर, हमारे अंदर व्यभिचार यानी कि हृदय की शुद्धि, और हमारे तपस्या को बढ़ाना है नियमों का पालन करते हुए। ये सब हमको गहरी तरह से सोचना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये धर्म जो खड़े हैं लड़खड़ा रहे हैं, और परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि अरे गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है, बैल कांप भी रहा है, तो उन्होंने उनको डांटना शुरू कर दिया, कौन हो तुम, हमारे राज्य में कोई भी निष्पाप प्राणी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, और धर्म तो बैल तो धर्म का प्रतीक है, तुम्हारी एक ऐसी हिम्मत हुई भी आपको लगेगा कि वो तो हिंसा कर रहे हैं उसकी, डांट रहे हैं उसको। लेकिन कुछ प्रकार की डांट जो आवश्यक होती है दुष्कर्म को रोकने के लिए, आगे आने वाले अनंत दर्द को रोकने के लिए ये डांट आवश्यक है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में कितने लोगों का वध कर दिया, बोले कितनी बड़ी हिंसा की उसने, बाप रे ये तो भगवान के प्योर डिवोटीज के माने जाते हैं, कैसे उनको मानेंगे आप प्योर डिवोटी के रूप में, इन्होंने तो सबको बाण धनुष लेके गदा लेकर हत्या किया, सर काट दिए, भीम ने तो छाती फाड़ कर क्या क्या किया था। लेकिन वो धर्म के नियमों के अंदर है, कुछ हिंसाएं ऐसी होती है वो धर्म के अंदर होती है, अधर्म को नष्ट करने के लिए उसका पालन किया जाता है, और ये भी समझना आवश्यक है। तो फिर जब तलवार निकालते हैं परीक्षित महाराज, तो यहाँ पर ये धर्म और इनकी बातें हो रही है, धर्म जो है वो बोल रहे हैं, तो परीक्षित महाराज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये है कौन। फिर उनको पता चला कि साक्षात धर्म जो है, मूर्तिमान धर्म जो है, वो बैल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये बहुत सिंबॉलिक है, बहुत लाक्षणिक है, क्योंकि कलयुग में ये सारे चीज़ें जो धर्म के तीन स्तंभ है वो नष्ट हो चुके हैं। ये अभी नहीं है, ये अभी परीक्षित महाराज के टाइम की बात है, तभी ये समझ में आ रहा है कि मांसाहार, नशा, जुआ ये ऑलरेडी चल रहा है, सॉरी मांसाहार, व्यभिचार और नशा ये ऑलरेडी शुरू हो गया था, लेकिन उस तरह शुरू नहीं हुआ था जैसे हम समझते हैं, कल्पना के रूप में था, मनो मन के विचार के रूप में था कि भी करना है इसको। प्रमाण क्या उसका? जब तलवार निकाली उन्होंने तो तुरंत शरण गए हो, बहुत होशियार थे वो, कली कली पर्सोनिफाइड है, भगवान के चरणों में गिर गए अपने परीक्षित महाराज के और कहा कि मैं भी आपका नागरिक हूँ, जैसे आपके नागरिक है ये भी मेरा नागरिक, मैं भी नागरिक हूँ, तो मैं आपका राज में जीना चाहता हूँ, मुझे भी जगह दीजिए। बोले चले जाओ यहाँ से, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले नहीं 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 मैं तो आपका नागरिक हूँ, प्रजा हूँ आपका। तो ठीक है, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर व्यभिचार होता है, जहाँ पर मांसाहार होता है, नशा की जाती है, वैसे चले जाओ। तो कहते हैं कि वो एक जगह लिखा है कि वो पूरा विश्व ढूंढ कर आए, परीक्षित महाराज के राज्य जब चल रहा था, जब शासन उनका था, पूरे विश्व के अंदर एक भी जगह नहीं जहाँ पर नशा हो रही है या जुआ खेला जा रहा है, जहाँ मांसाहार हो रहा है या व्यभिचार हो रहा है। वो तो आप सोचो, आप आज तो आपको अपने बिल्डिंग के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत सब साथ मिलेंगे आपको, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। खाली एक चौखट ऐसी है कि जहाँ पर नहीं हो रहा है, उसके बाहर जाओगे तो सब वही है। हाँ, वो लंदन अमेरिका में तो मंदिर के बाहर जाते ही आपको मीट की खुशबू आएगी, मतलब बदबू आएगी, उसके बाजू में ही गे हॉल होगा, उसके बाजू में ही वेश्या व्यवसाय होगा, उसके बाजू में शराब की दुकान होगी, उसके बीच में मंदिर हरे कृष्णा। हाँ, एकदम दया का ये प्रतीक है कि ऐसे भयंकर स्थिति के अंदर हरे कृष्णा के लोग रहते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं और वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनको भी सुनाई पड़ता है जो व्यभिचार कर रहे हैं, उनको भी सुनाई पड़ रहा है रात को और दिन में सुबह 4:30 बजे। जो लोग मंगल आरती को सुबह आ रहे हैं भागवा के, ये लोग नशा करके व्यभिचार करके निकल रहे हैं सुबह, तो वो सुनते हैं मंगल आरती का आवाज़ हरे कृष्ण मंत्र। तो ये करुणा का प्रतीक है। तो ये कली जो है पूरे विश्व में ढूंढ कर आया, लोग जगह नहीं ऐसे आपके राज्य में, कितना शासन बढ़िया रहेगा। देखो मुझे लगता है अगर काश में उस समय होता कितना अच्छा होता। हाँ, कहीं पर अभी हमारे सुबह हम लोग घर में आरती करते ना, तो नेबर के घर से वो नॉनवेज को फ्राई करने की खुशबू आती, बदबू आती है। व्हाट टू डू, दिन में कभी भी आती है, कुछ भी होता है, शराब की नीचे से कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी धुआं ऊपर आता है और उसको हमको मालूम पड़ता है कि कोई सिगरेट पी रहा है इतना। और उस समय देखो कितना पवित्र था। तो वापस आया वो और बोला कि महाराज हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं ऐसी, मैं कहाँ रहूँ। तो उन्होंने एक उत्तर दिया, उन्होंने कहा जहाँ पर सोना है वहाँ पर आप रहो। कितना सिग्निफिकेंट चीज़ है हमारे लिए, सोचने की बात है ये, क्योंकि जहाँ पर सोना है मतलब उस समय का करेंसी धन सोना था, स्वर्ण। हाँ, स्वर्ण मुद्राओं में वो लोग विनिमय करते थे, मुद्रा विनिमय। तो जहां पर पैसा जरूरत से अधिक होता है वहां पर ये चार चीजें धीरे धीरे आ जाती है उसके पीछे पीछे। हम कहेंगे हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर बहुत धन पड़ा है जो ऐसे ही पड़ा है, हम लोग भगवान की सेवा में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपके हाथ से सारे पाप करवाएगा, सारी हिंसाएं करवाएगा, भावनिक मानसिक और सामाजिक हिंसाएं आपसे करवाएगा, गर्व को बढ़ाएगा आपके, गर्व को बढ़ने से तुरंत बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अंदर आ जाएंगी। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। और प्रभुपाद जी ने हमारे लिए वो वैकुंठ उत्पन्न करने का प्रयास किया है, ये चार नियमों को पालन करने वाले भक्त निर्माण करके एक विश्व में एक शुद्धि निर्माण करने का प्रयास किया है, पवित्रता, जिसके आधार पर, जिसके संघ के द्वारा हम लोग सब लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम प्रगति करेंगे, आगे जाकर भगवान को पा सकते हैं। ये सब कीचड़ के बीच में हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा दीपक जल रहा है जो पवित्रता को प्रदान कर रहा है सबको। तो यहाँ पर कहा है ना, तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि सबको, सब लोग पाप कर रहे हैं और सबको भगवान देख रहे हैं और सबको दंड मिलेगा, और वो साक्षी ऐसा साक्षी है कि उसमें आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो साक्षी ऐसा है कि आप जहाँ जाओगे जो सोचोगे वो भी उसको पता है कि आप सोच क्या सोच रहे हो, करने के बाद तो आगे की बात है, क्या विचार चल रहा है, क्या संकल्प कर रहे हैं मन में, वो भी उनको पता है। ऐसा साक्षी है, तो इसलिए हमारे कर्म जो है वो सारे देखे जा रहे हैं, विटनेस है उसके लिए हर जगह पर। जब द्रोणाचार्य ने एक फल दिया सब करो, पांडवों को बोला जाओ कहीं खा के आओ, यहाँ पर कोई देखता नहीं, वो सब लोग कोई गुफा में गया, कोई पेड़ के पीछे गया, कोई किधर गया, कोई पहाड़ के पीछे गया, कोई घर के पीछे गया, कोई अंधेरे में गया, सब लोग खा के आए। एक धर्मराज अकेला जो है वो फ्रूट वापस लेकर आए, बोलते महाराज कई जगह नहीं यहाँ पर जहाँ पर कोई देखता ना हो। हर जगह पर भगवान की आंखें बसी हुई है, दिन रात हर काल में हर समय में हर जगह पर उनकी आंखें फैली हुई है, वो सब देख रहे हैं, तो इसलिए मैं फल आपको वापस दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको ही सच्चा ज्ञान हो गया है, आप सही ज्ञानी हो, केवल किताब का पढ़न मनगढ़ंत आपको श्लोकों का ज्ञान नहीं है, आपको अनुभूति हो गई है, आपको वो अनुभूति हो रही है कि सब जगह भगवान बसे हुए हैं, सब जगह देख रहे हैं हमको वो। तो ऐसे भगवान जब सब जगह देख रहे हैं तो हम सोचते होंगे कि हम चीटिंग कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो छूट जाएंगे हम। यस, दुनिया के कायदे से आप छूट जाएंगे, लेकिन भगवान के कायदे से हम छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कायदा केवल एक जन्म के लिए सीमित नहीं है। समझो किसी ने आज मर्डर किया किसी का और कल मर गया वो हार्ट अटैक से, समझो तो आप सोचेंगे बच गए वो मर्डर के पनिशमेंट से, नहीं, भगवान का कायदा, ये दुनिया का कायदा जो है वो इसी जीवन के तक सीमित है। गया तो गया, अभी क्या करेंगे, उसके बच्चे को थोड़ी फांसी लगाएंगे आप कि उसके पिताजी ने खून किया था। लेकिन भगवान का कायदा जो है, जहां तक आत्मा जहां जहां यात्रा कर रही है वहां उसका पीछा करती है, तो कर्म का हिसाब किताब रखा जाता है, और वो कुत्ते के जन्म में हो या मनुष्य के जन्म में हो या देवता के जन्म हो, वो सारा उसको पीछा करेगा, उसका छोड़ेगा नहीं, उसको कोई नहीं बच सकता है। इसलिए हमको लगता होगा हम जप कर रहे हैं सुबह तो क्या शाम को क्या वो पाप नष्ट हो जाएगा अपने आप, है ना। कल रात में गलती से किसी को बोल दिया, कुछ पैसा इकट्ठा करके कहीं और लगा दिया, या कल मैंने किसी को झूठ बोल के माल बेचा मेरा ऑफिस में, बोले क्या कोई बात नहीं हो जाएगा सब कुछ क्लीन, कोई देखा नहीं मुझे कुछ करते हुए। मैं ऑफिस का कुछ चीज़ जो है ना, वो हमारी कंपनी बटर बेचती है, तो मैंने दो पैकेट घर पे लेके आया शाम को खाने के लिए। हर चीज़ का हिसाब होता है और हर चीज़ का हमको चुकाना पड़ता है, कोई फ्री नहीं यहाँ पर। अगर आपने ज़िंदगी में 50 लोगों का दिल दुखाया है कठोर वचन बोल के, तो सारे कर्म आपके पीछे आएंगे, सारी बददुआएं आपके पीछे आएंगी। वी शुड नॉट थिंक कि हम लोग डिवोटीज हैं और वो जप करते हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमको कोई छोटा मोटा पाप की चिंता की जरूरत नहीं है। नहीं, हम भक्त हो या नहीं भक्त हो, हर एक जो काम कर रहे हैं हम लोग उसका परिणाम मिलेगा। अगर आप अकर्म कर रहे हो तो आप इन कर्म बंधनों से हर रोज मुक्त हो रहे हो, लेकिन आप अकर्म कुछ समय कर रहे हो और बाकी समय पर अगर हम लोग दुनियादारी का काम कर रहे हैं, बोलते ना आई एम डिवोटी फॉर 2 hours एंड 22 hours आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम लाइक एनीबडी एल्स, यू नो। तो हमारा सारा जो जहां जहां जिस स्तर पर हम जो जो कर रहे हैं वो सारा परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि हम लोग डिवोटी हैं इसलिए हम लोग बच जाएंगे इससे, क्योंकि हमारा भक्ति कहां पर शुद्ध है, अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर है तो हम सब कर्मों के फल से मुक्त हैं। हमारे कर्म ऐसे हैं कि जो खुद के लिए करते ही नहीं हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भक्त अपने लिए कार्य करता ही नहीं है, भक्त हमेशा भगवान के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन क्या हम लोग सही रूप में 100% ऐसी स्थिति में है क्या? हम लोग अभी भी कुछ परसेंटेज में हैं कि यथा माम प्रपद्यन्ति, हाँ कुछ परसेंट के डिवोटी हैं, कुछ परसेंट सरेंडर हैं और कुछ परसेंटेज हम लोग सरेंडर नहीं हैं। तो जितना परसेंट हम लोग शरणागत हैं उतना परसेंट हम लोग मुक्त हैं, और जितना परसेंट हम शरणागत नहीं हैं उतना सारा दुनिया का रूल हमको लागू है, सारा यमराज का कायदा हमको लागू है, सारा कर्म बंधन हमको लागू है। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, 100% शरणागत हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कर्मफल जल जाएगा हमारा। इसलिए हमको 4 नियम पालन किया स्थूल रूप से और 16 माला रोज सोते सोते किया, हाँ तो बोला आपको लगेगा कि हमारा बेड़ा पार हो गया, ऐसा नहीं है। इस इज ओनली बिगिनिंग, ये केवल शुरुआत है, आगे हमको अपने चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच में काफी अमूलाग्र बदल लाना है, तब जाकर हम अपने आप को भक्त कह सकते हैं। अरे भक्त कौन है, भक्त की व्याख्या क्या है बताओ, जो भगवान से विभक्त नहीं है वो भक्त है क्या? हम लोग यकीन कह सकते हैं कि मैं भगवान से विभक्त नहीं हूं, 24/7 हर पल एक लव मात्र में भगवान से विभक्त नहीं हूं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग? हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कब पूरे 100% माया में चले जाते हैं, हमको पता भी चलता नहीं. व्हेन आई स्लिप्ड, पता नहीं चलता हमको. इसलिए ये जो यहां पर वर्णन किया जा रहा है बहुत गहरा विषय है. ये हमको 16 माला में भी बहुत सारी प्रगति करनी है, अभी उसको ध्यान पूर्वक करना है, न सोते हुए भगवान का विचार करते हुए करना है. हर एक मंत्र में पुकार होनी चाहिए भगवान के लिए, तब जाकर हम कह सकते कि हमारा जप हो रहा है. हम तो खींच रहे हैं माला को, अभी 15 हो गए, अभी एक बाकी है, अभी 14 हो गए, दो बाकी है, अभी तो 4 ही हो गए, अभी 12 बाकी है. बाप रे कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना है. ऐसे मूड से हम लोग जप को अप्रोच करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि 16 माला तो नंबर में वो खींच रहे साक्षी माला. 16 माला का मतलब क्या है? 1728 बार हम इंटू 16 बार भगवान को पुकार रहे हैं क्या, बताओ. तो तब जाकर हम कह सकते कि हम शरणागत भक्त हैं और हमारी अभी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर प्रगति हो रही है. और वो 16 माला ध्यान पूर्वक जप करने के बाद जो चेतना बनती है, तो दिन भर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कोई खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. अरे धन के बारे में सोचो आप, जब जन्माष्टमी का समय आता है तो हम लोग अपने आप को भक्त कहलाते हैं, लेकिन कितना सोचते हैं कितना दूं. और वही आदमी अगर किसी दुकान में गया शर्ट खरीदने के लिए, तो एक साथ 5 शर्ट खरीद लेगा धड़ाधड़, कितना बिल हो गया? 16,000 रुपया तुरंत दे देगा. फिर साड़ी खरीदने जाएंगे तो 18,000, 20,000, 25,000 की साड़ी लेके आएंगे, और उसके बाद दुकान से घर आएंगे और भी जन्माष्टमी को देना है तो कितना, 2,000 दूं कि 2,500 दूं, ये सोचेंगे. ये हमारी अवस्था है, बाय द वे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ. हम लोग अपने आप को भक्त समझते हैं तो ये हमारी अवस्था है. तो हम कितनी शरणागत हैं भगवान के लिए. खुद के लिए हमारे पास सब कुछ है, खुद के लिए 1,000,000,000 खर्च कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को देने का समय आएगा तो हम कितने कंजूस अपने आप बन जाते हैं. बोले फिर ये भविष्य का भी विचार करना चाहिए ना, भविष्य के बच्चों को भी सोचना है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, कितने विचार करते हैं हम लोग. तो वो हमारा प्रूफ है. जब भोग का समय आता है तो हम कितने लालायित रहते हैं, और जब त्याग और सेवा का समय आता है तो कितने हम कंजूस रहते हैं, ये हमको विचार करना चाहिए. तो भक्ति जो है ना वो बहुत गहरा विषय है. वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक हमारा भोग के ऊपर से ध्यान नहीं हटता है तब तक भक्ति जो है वो संकुचित रहती है. रही बात कुछ धन के ऊपर बात करेंगे. ये धन जो है यहाँ पर क्यों भेजा परीक्षित महाराज ने कली को, क्योंकि तो धन जो है हमको कई प्रकार के विकार देता है. धन हमारे परिवार में फूट डालता है. देखो आप बचपन में सब भाई बहन गले मिलके खेलते हुए जूठन खा के इतना प्रेम करते हैं. बड़ी बहन छोटी बहन की इतनी देखभाल करती है, बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है, छोटा भाई बड़े भाई से कितना प्रेम करता है. पूरा बचपन बीत जाता है, जैसे ही बड़े हो जाते हैं दूर हो जाते हैं तुरंत. उसके बाद में केवल कोर्ट में मिलते हैं, कभी कभी केवल कोई अगर परिवार में मर गया तभी मिलते हैं. आजकल के जमाने में ये स्थिति है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन उनका धन पे रहता है. जब माँ बीमार है तो कोई मिलने नहीं आता है, जब माँ चली जाती है तुरंत अपना वसीयत का हिस्सा लेने आ जाते हैं. वो बार बार आते हैं, फिर लगातार आ जाते हैं. बोला तभी तो हमको इतनी बार फोन किया, आपको कभी एक बार भी नहीं आए. अभी भी एक आध बार आ जाते हैं और पूछते हैं तो मम्मी ने वसीयत लिख के रखा है, वो कहाँ है, कौन है, उसके किसके पास में है, ऐसा इंक्वायरी करके जाते हैं. वाय? पैसा. पैसा जो है वो लोगों को दूर कर देता है, लोगों के मन में वितुष्ट उत्पन्न करता है, लोगों के मन में दुश्मनी उत्पन्न करता है, एकता को नष्ट कर देता है. यहाँ तक कि आध्यात्मिक संस्थाओं में भी जब पैसा आता है तो क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं. भक्ति सिद्धांत जी महाराज भी कहते थे ना ये कि मैंने बेकार में मंदिर बनाया, निकाल दो उसका मार्बल और पुस्तक छापो और बांटो कि प्रचार करो. कि जो मार्बल का मंदिर आया तो फिर सब झगड़ने लगे, मुझे कौन सा रूम मिलेगा. ये सब कौन है? विरक्त लोग हैं जिन्होंने बाय द वे पैसा छोड़ दिया है, उनके हाथ में पैसा आता ही नहीं. लेकिन फिर भी पैसा भी एक स्थूल स्वरूप है, करेंसी गोल्ड ये स्थूल स्वरूप है, लेकिन जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो भी इसी से संबद्ध है ना. आपका पैसा नहीं है लेकिन आपको वो रूम चाहिए, वहां पर रहना, आपको वो आपके नाम पे होना चाहिए, मैं वहां पर रहूंगा. तो ये धन जो है, मैं मुझे अभी भी याद है जब मैं सऊदी अरब में था मुझ पर बहुत कर्जा था। हाँ ये बात सोचिए आप, बहुत सुन ध्यान से सुनिए। तो मैंने हर महीने में तय किया था कि मुझे इतना खर्चा है 4 हफ्ते का, और बाकी सारा मेरा धन मैं बम्बई भेजता था तुरंत कर्जा चुकाने के लिए। तो मैंने 26 महीना वहाँ पर काम किया और हर महीने मैंने यही किया। 24 महीने के बाद मेरा कर्जा पूरा हो गया, तो मैंने पहली बार उतना सा रख के बाकी भेजा नहीं, और भी कुछ रखा और बाकी भेज दिया। और क्या कहूँ आपको, वही मैं, मेरे जेब में अभी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो 24 महीने में नहीं था। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि अभी मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा लूँ क्या, मैंने 24 महीने में नहीं खाया, मैंने ये भी नहीं खाया, मैंने ये भी खरीद नहीं किया, मुझे वो भी लेना था लेकिन मैं खरीद नहीं पाया। मतलब मुझे एक्चुअली फीलिंग हुआ कि जेब में जो करेंसी है मेरे, वो मुझसे बोल रही है ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। जब जरूरत से अधिक आपके जेब में है तो वो बोलेगा ये खरीद लो, ये कंठी माला पुरानी हो गई, मैं नई माला लो अच्छी रहेगी, झोली भी बड़ा पुरानी लगती है, ये नई झोली लेनी चाहिए, जब करने के लिए कितना अच्छा रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन धन अधिक होने से बिना जरूरत की चीजें आपको लगेगा जरूरी है और आप खरीदते रहेंगे उसको, और आपका कबड़ भरा रहेगा। ऐसा है पैसा ही। और सबसे अधिक पैसे का खराब परिणाम यह है कि वो दुश्मनी पैदा करता है। लोग खून कर देते लोगों का पैसे के लिए, क्या नहीं करते हैं। सबको पता है कि ये पैसा जो है कभी आप संग में लेके जाने नहीं है, लेकिन पैसा इतना लोगों को मोहित करता है कि पैसे से हम लोग पैसे के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। रिश्ता, माँ, पिताजी, भाई, बहन, इनके सारे रिश्ते हम तोड़ सकते हैं, दोस्तों को दूर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं एक पैसा प्राप्त करने के लिए। इसलिए कली को परिषद महाराज ने, जहाँ पैसा है, ये 4 जगह तो नहीं है तो पैसा जाए वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि सारे जो धर्म के स्तंभ को नष्ट करने वाले पाप है वो अधिकतर पैसे से होते हैं। सोचो आप जरा इस बात को, पैसा होने से ही ये पाप होते हैं। और भी कैसे बचना चाहिए उससे, अगर समझो कोई धनी व्यक्ति है, कोई बहुत धनवान है, बहुत पढ़ा लिखा है, पैसा कमाता है, केवल वो धन जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो उस धन का जो कली वाला परिणाम है वो अमर नहीं होता है। इसलिए नियमित रूप से वसुदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी के जन्म होता कृष्ण का, तभी वो वर्णन किया जा रहा है कि धन की शुद्धि तब होती है जब वो भगवान की सेवा में लगा जाता है। और कोई किसी भी गुण में धन को लगाएंगे, सत्वगुण में लगाएंगे, तो भी धन आपको उसका परिणाम नहीं छोड़ेगा। त्रिगुण के ऊपर जाना है, त्रिगुण के प्रभाव से किए वाले कार्य छोड़कर त्रिगुणातीत कार्य हमको करने हैं और वो इच्छा होने पर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा धन जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो फिर हम लोग त्रिगुण के ऊपर चढ़ सकते हैं और वो धन हमारे ऊपर सत्वगुणी रजोगुणी परिणाम नहीं करेगा। इसलिए बहुत गृहस्थों के लिए बड़ा विषय है और ब्रह्मचारियों के लिए बड़ा विषय है, क्योंकि वो भी खुद का धन नहीं लेकिन किसी का और धन मैनेज करते हैं ना। तो ये सोचने का जरूरी है कि हमारा धन जो है वो शुद्ध रूप में भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और उसके बाद में हमारा और भी धन है, हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारा सुदृढ़ मन जो निर्णय ले सकता है ना, ये हमारा धन है। किसी का वेल्थ, किसी का बहुत पावरफुल शरीर है, किसी का बहुत पावरफुल मन है, किसी की भावनाएं बहुत स्ट्रांग है, किसी की बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, किसी के पास बहुत नॉलेज है, ये भी हमारा धन है। और ये भी अगर हम भगवान के सामने नहीं लगाएंगे तो शास्त्र में लिखा है कि डूबते हुए आदमी के ऊपर जब सोने का मुकुट होता है सर पे, तो उसको डूबने में बहुत सहायता करता है वो, है कि नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, तो मेरे बहुत बड़ा मेरा वो खिताब था, मुझे वो गोल्ड मेडल मिला था ना, तभी ये गिफ्ट मिला था, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, उसको लेके डूब रहा है पानी में लेकिन उसको निकालने को तैयार नहीं है, तो और अधिक तेजी से उसको डूब जाएगा वो। तो अगर हमारे पास ऐसी बुद्धि है जो भगवान की सेवा में नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा मन है जो अभी तक पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं है, तो मन और बुद्धि जो हमारा ऐसा ज्ञान है जो हम किसी को बांटते नहीं है, वो सारा हमारे पतन का कारण हो जाएगा, डूबने का कारण बन जाएगा। तो वहां पर भी आपको परसेंटेज देना होगा भगवान को। ये सब आवश्यक है सोचना। धन केवल करेंसी में नहीं होता है, वो भी तो स्थूल रूप है उसका। लेकिन हमारे पास जो भी धन है, समझो हमारे पास, समझो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अनुयायी हैं, वो भी एक गुरु का धन होता है ना, कि बहुत सारे अनुयायी हैं उसके पास। लेकिन वो अनुयायियों का भी इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए, अपना पद को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपना अधिकार को और जमाने के लिए कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने इतना प्रचार किया है, वो भी हमारा एक प्रकार का धन है। एक कब का धन है, एक प्रकार से विरक्त होने के बाद का धन है ये, सोचिए आप। आपने दुनिया तो छोड़ दिया, बाल भी उतार दिए, इतना विरक्ति हो गया, फिर भी लेकिन इन धनों से हमारी आसक्ति है, वो पद से हमारी आसक्ति है, जो हमारा एक्चुअल धन है, हमारी वेल्थ है कि मैं अभी ये एक संस्था का अध्यक्ष हूँ, ये एक संस्था का डायरेक्टर हूँ, ये हमारा धन है। इसका भी इस्तेमाल अगर हम भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो भी हम त्रिगुणों के बंधन में फंस जाएंगे, मुक्त तो नहीं हो सकते हैं। धन केवल पैसे से नहीं होता है, धन कई प्रकार का होता है। और ऐसे कहते हैं ना, वेल्थ करप्ट्स एंड इट करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स इट करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब वो आपको दूषित करेगा तो पूरी तरह से दूषित करेगा, ऊपर से नीचे तक, छोड़ेगा नहीं आपको। जैसे कैंसर जब एक बार घुस गया शरीर में तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, अरे नहीं दिमाग में मत जाओ, खाली हाथ में जाओ तो हार्ट में मत जाओ, खाली पैर में जाओ, हड्डी में मत जाओ। एक बार कैंसर घुस गया फिर वो जिस गति से सब जगह फैलेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। वैसा ही ये धन का प्रभाव है जो अलग अलग स्थूल और सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसके पास कुछ ना कुछ धन तो होता ही है। भिखारी के पास भी धन होता है जिस पर वो गर्व करता है, बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। फिर वो शादी जब करता है अपने लड़के की तो ट्रेन स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म जहां पर वो भीख मांगता है वो अपने जमाई को दहेज दे देता है कि आज से तू यहां भीख मांगना, आज तक ये मेरा इलाका था, ये मेरा इलाका भीख मांगने का था, आज मैं तुमको इसको दान करता हूं मेरी बेटी की शादी में, अभी मैं कहीं और भीख मांगूंगा, आज से तुम यहां भीख मांगना। ये भी उसका खुद का लगता है उसको कि उसका धन है, उसका अधिकार है, किसी को आने देगा नहीं वहां पर नए भिखारी को। जैसे कुत्ते कैसे होते हैं, अपने एरिया में नए कुत्ते को आने देते नहीं, तो वो कुत्तों का धन है, सोचता है कि मेरी एरिया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं होते हुए भी समझना और उसका इस्तेमाल इस तरह से करना, ये भी हमको बंधन में डालेगा, याद रखना। हम सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमको क्या, हम लोग हमारे तथाकथित भक्तिपूर्ण कार्यों के द्वारा एक्चुअली मुक्त हो रहे हैं कि अभी फंसते जा रहे हैं, और क्यों फंसते जा रहे हैं। एक्चुअली हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि माई एक्टिविटीज, जब मैं जब करता हूँ, जब मैं चार नियम पालन करता हूँ, जब मैं मेरी सेवा करता हूँ, धन का विनिमय करता हूँ, या मेरे अधिकार में मंदिर का संचालन करता हूँ, मंदिर की गतिविधियों का संचालन करता हूँ, वो सबके अंदर सूक्ष्म रूप में माया बसी हुई है, वो हर स्थिति में हर सूक्ष्म अवस्था को, माया को हटा के भगवान के साथ जोड़ देना, ये एक कुशल संयोजक का प्रिविलेज है। और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे अधिकार में हैं, उन सब लोगों को ये चेतना देना, क्या कहते हैं उसको, निर्मोही और निरासक्त मोषित चेतना उनको देना कि डोंट बी अटैच्ड। आपके जो अधिकार में धन है, जितने अधिकारी हैं, जितने रिसोर्सेस हैं, जितने व्हीकल्स हैं, जितने कुछ है, वो सबका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए न करते हुए केवल भगवान की सेवा में करते रहना, ये सबको चेतना देना चाहिए। तब जाकर हमारी मूवमेंट जो है ना वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो छोटा मंदिर था तो हम जानते हैं कि बहुत प्रेम था लोगों का, अभी तो इतना बड़ा मंदिर हो गया है कि कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। हम जब आते हैं तो कोई जानने वाले भक्त मिलते ही नहीं है, सब इतना इम्पर्सनल हो गया है, अभी वो पुराना आनंद नहीं आता है, ऐसा हमको लगता है ना कभी कभी। तो वो स्थिति को बनाए रखना भी बहुत भक्ति में जरूरी है। जब धन संपत्ति या ऐश्वर्य बढ़ जाता है तब उसके लपेट में न आकर वो मूलभूत प्रेम को और संबंधों को बनाए रखना, ये भी तपस्या है। उन अधिकारों को, उन ऐश्वर्यों के साथ में अटैच ना होना, और वो जो हमारे भक्तों के साथ प्रेम संबंध है उसी को हमारी नींव बना के जीवन में चलते रहना, ये बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर ये जो मैच फार्मूला है ना, मैच फार्मूला जानते हैं, मैच फार्मूला हमारे भक्तिवेदांत अस्पताल में हमने ये अध्याय के शिक्षा के ऊपर एक मैच फार्मूला बनाया है, MATCH। क्या है वो? M मर्सी, A ऑस्टेरिटी, T ट्रूथफुलनेस, C क्लेंजनेस, H होली नेम। इस रूप से हम उनको, पेशेंट लोगों को स्पिरिचुअल केयर देते हैं, इस रूप से हमारा स्पिरिचुअल केयर का हमने प्रोग्राम बनाए हैं, मैच फार्मूला ऑफ स्पिरिचुअल केयर है। किस पर आधारित? श्रीमद् भागवत के ऊपर। श्रीमद् भागवत से निकाला गया उसको, श्रीमद् भागवत में उसका प्राप्ति हुई हमको। तो हम सब लोगों को चलना चाहिए इसी तत्वों के आधार पर, और अलग अलग स्तर पर इन चार तत्वों का, चार नियमों का पालन करना चाहिए, और भगवान के नाम को जप करके इससे परे उठने का प्रयास करना चाहिए। जब चार नियम को पालन करके जब मनुष्य बनेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे तो भक्त बनेंगे, बोथ आर इम्पोर्टेंट साइमल्टेनियसली। और हमारा जितना भी रिसोर्स भगवान ने हमको दिया है, शरीर की शक्ति दी है, मन की शक्ति दी है, बुद्धि की शक्ति दी है, ज्ञान दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, अनुयायी दिए हुए हैं, अधिकार दिया हुआ है, हाँ रिसोर्सेस दिए हुए हैं, वो सबका इस्तेमाल भगवान की सेवा में ही हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, माया ऑलरेडी प्रयास कर रही है हमको डुबाने के लिए, याद रखना। अच्छा भक्त बन रहे हो, अच्छा ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंट बन गए हो, अच्छा अभी करोड़ों का आपका विनिमय करने का अधिकार हो गया है, ठीक है। तो माया फुल्ली एक्टिव है और हम लोग फुल्ली एक्टिव नहीं रहेंगे उसके खिलाफ, तो माया तो हावी हो ही जाएगा हमारे ऊपर। ऐसा कहते हैं समझो कोई ब्रह्मचारी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको विवाह नहीं करना है, उसको अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना है, लेकिन अगर कोई कन्या उसके लिए प्रार्थना कर रही है कि भगवान मुझे इससे ही शादी करनी है, और आज अगर रोज आप प्रार्थना नहीं करते भगवान से मुझे इसमें नहीं पढ़ना है भगवान, तो एक दिन आप जरूर उसकी प्रार्थना को भगवान सुनेंगे, क्योंकि उसके लिए क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रार्थना नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रार्थना मैंने देखा है। बाय द वे आई एम टेलिंग यू, ये माय एक्सपीरियंस है। अगर आपको बचना है इन चीज़ों से, तो आपको एक्टिवली रोज भगवान से प्रार्थना करनी होगी, मुझे बचना है, मुझे नहीं पढ़ना है इससे, कुछ हो नहीं रहा है ऐसा कुछ, लेकिन आपको रोज अपना ना वो क्या बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक, पता है जब हम लोग मच्छरों के द्वारा भरे हुए जगह में जा रहे हैं और आपको मलेरिया का एंडेमिक एरिया है, वहाँ पर मलेरिया का साथ चल रही है, क्या बोलते हैं मलेरिया का, व्हाट इज कॉल्ड हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एपिडेमिक महामारी, तो हम लोग रोज मलेरिया का वैक्सीन दे के ही बाहर निकलते हैं, भले आपको मच्छर काटे या नहीं काटे, क्योंकि आप जाएंगे तो मच्छर काटेंगे आपको, लेकिन आपके शरीर में अगर वो वैक्सीन है तो मच्छर काटने के बाद पे आप पर मलेरिया का परिणाम नहीं होगा। अगर टाइफाइड के एरिया में आप जा रहे हो, टाइफाइड वैक्सीन ले लिया है, तो आप शायद गलत पानी भी पी लेंगे तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जब तक आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं लेते हो और एक दिन भूल गए वो दिन मच्छर काटा तो मलेरिया हो गया आपको, तो इसलिए आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए। और ये मत समझना कि ये खाली गृहस्थों के लिए है, खाली ब्रह्मचारियों के लिए है, सब गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि तो गृहस्थ पर को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। और जब कभी आपको लगता है कि अरे संकट आ रहा है, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मुझे इसे नहीं इसमें नहीं गिरना है, भगवान मुझे धन की लालसा में नहीं गिरना है, भगवान मुझे स्त्री की लालसा में नहीं गिरना है। चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय, क्यों बोल रहे हो, तो परम सन्यासी थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बोल रहे भगवान मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मुझे धन नहीं चाहिए, हाँ न जन्म, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे किसी का तारीफ नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये ट्रैप कर सकते हैं, इतना सारा भक्ति करने के बाद में मुझे वो खींच सकते हैं। खींच मतलब क्या, क्या वो आत्मिका क्या हो? एक कवर करती है और बाद में दूसरी खींचती है, प्रक्षिक आत्मिका है ना, आवरण आत्मिका, हाँ भक्ति में आने पर भी आवरणात्मिका और प्रक्षिकात्मिका ये प्रकार की माया आपको खींच सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रोज प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे भगवान धन की लालसा में मत डालना, मैं जानता हूँ मुझे धन बहुत अच्छा लगता है, आई लव मनी माय डियर लॉर्ड, आई नो आई लव वेरी मच, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहुत पतित हूँ, मुझे धन से बहुत लालसा है, लेकिन आप मुझे बचाओ भगवान, मैं जानता हूँ मुझे सुंदर स्त्रियाँ अच्छी लगती है, सुंदर पुरुष अच्छे लगते हैं, आई एम गेट अट्रैक्टेड, बड़े भगवान मैं बुद्धि के स्तर पर कम से कम नॉलेज के स्तर पर समझ चुका हूँ कि ये अच्छा नहीं है, भगवान आप मुझे बचाइए, मैं तो खुद बचने वाला नहीं हूँ अपने आप मुझे बचाइए। अरे प्रभुपाद जी 81 साल की उम्र पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके रोते थे और लोग पूछते प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, वो कहते थे कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे माया से बचाओ। अरे प्रभुपाद जी अब 81 ईयर्स के हो, अभी क्या आपको इतने शुद्ध भक्त बन गए हो, अभी भी बोलते मैं रोज प्रार्थना करता हूँ ना इसलिए माया से बचाऊं। तो मैंने सोचा कि अभी माया से बाहर निकल चुका मैं, अभी प्रार्थना करना बंद कर दिया, उसी क्षण माया मुझे आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका उसी समय आपको गिरा देगी वो। तो ये भक्ति का डे टू डे का यात्रा है, सफर है, हाँ जर्नी, डे टू डे जर्नी है ये हमारी, तो रोज प्रार्थना करना, ऐसा नहीं कि कल प्रार्थना किया तो हो गया, अभी ऐसा भी प्रार्थना करना है भगवान एक दिन मैं आपको शायद छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन बाल को पकड़ कर मुझे खींच के लेके आना, घसीट के, मैं नहीं आना चाहूंगा उस समय, लेकिन फिर भी आप मुझे लात मार के वापस भक्तों के संग में लाना, ऐसे बोल के रखना अभी बाय द वे, क्योंकि कल क्या होगा किसी को मालूम है क्या, कल किस तरह से माया आपको खींचेगी और ले जाएगी आपको। अरे भगवान के होते हुए भी कालिदास को ले गया था ना वो, भट्टा आर्य क्या बोलते हैं उसको, क्या मांग रहे थे वो? नहीं, वो यू लाइक टू हैव सम व्हाट, स्वीट नेक्टर, क्या बोल रहे थे ना? भगवान के संग में भगवान का सेवक होते हुए भी वो अट्रैक्ट हो गया कि नहीं उधर भट्टा आर्य के बीच में? स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए, उसकी सैंडी को पकड़कर उसको खींच के लेके आए, डांटा उसको अच्छी तरह से। तो ये मत समझना कि आप मंदिर में रहते हो, मंदिर में आते हो, मंदिर में सेवा करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान के संग में हो तो आप बच जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये माया ऐसी है ना, वो आपका जरा एक क्षण ध्यान छूट गया उधर ही पकड़ लेगी आपको, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है इसके ऊपर, कॉन्स्टेंटली आपका क्या वीक पॉइंट है उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है वो। उतना हम लोग विजिलेंट नहीं है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में हो, इतना विजिलेंट हम लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसे किसी में एक ही है, प्रार्थना करते रहो भगवान को कि बचा लो हमको, हमको नहीं इस धन के चक्र में पड़ना है। जितना धन है उसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है, सही से अच्छी तरह रहना है, ऐसा नहीं कि भूखा मरना है, अच्छी तरह से रहना है। लेकिन जितना एक्सेस पड़ा हो वो आपकी ही सेवा में लगाओ, लगता रहे तो ही उस धन को भी वैल्यू है। वो धन की लालसा से बचने के लिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कैसे उसको इस्तेमाल करना है। और एक याद रखना, भगवान को देने से कभी भी कम नहीं होता है, भगवान को देने से हमारा धन बढ़ जाता है। जब भगवान को उसने वो फल वाली ने सब फल दे दिए बिना सोचे, कितना पैसा नुकसान हो गया। कहते हैं 2 दिन तक वो देती रही भगवान को, ऐसा नहीं कि भगवान के लिए आई वो और आज पूरा थाली दे दिया भगवान को, भगवान ने कुछ चावल के दाने दे दिए एक्सचेंज में, नहीं वापस घर गई, वापस भर के लाई और देती रही। और थर्ड डे उसको उसने देखा कि अपनी थाली जो है पूरी धन से भर गई है, लेकिन उसने सोचा नहीं कि कितना नुकसान हो गया, क्या मिलने वाला था, सोचा नहीं उसने कभी। जब निरपेक्ष होकर हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान तो धन के सब मालिक है ना, सब लक्ष्मियों के, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, अनंत लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती रहती है। और एक झूठ मूठ की लड़ाई में जब एक लक्ष्मी का एक कंगन टूट के गिर गया था, तो वो टूटे हुए कंगन पर पूरे क्रिएशन का इकोनॉमिक्स चल रहा है आज भी। एक टूटे हुए एक लक्ष्मी के ऊपर कितने धन, कितने अलंकार होते हैं। उसमें झूठ मूठ की लड़ाई में एक टूट गया तो उसने गुस्से से फेंक दिया उसको, वो टूटे हुए एक कंगन के ऊपर पूरा महाविष्णु का क्रिएशन जो है वो चल रहा है, और ऐसे बहुत गहने उसके ऊपर है। और ऐसे एक लक्ष्मी का वर्णन है, ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम अनंत कोटि लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में रहती है, वो हम क्या देंगे उनको हम। लेकिन जब देंगे तो वो आपको मालामाल जरूर करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि और देंगे तो और भक्त भगवान की सेवा में लगाएगा। इसलिए भगवान की सेवा में देने से कभी भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि कम होगा, मेरा कैसे होगा, परिवार का कैसे होगा। उनका ही दिया हुआ उनको देंगे तो वो आपका संभाल करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, वो ही बिकम्स ओब्लाइज्ड टू टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू गिव योर मनी टू कृष्णा। ऐसा है, तुम्हारा भक्ति का जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ जीवन है, इसे बहुत अद्भुत बातें होती है। धन देने से धन की वृद्धि होती है है ना, बाहर की दुनिया में धन देने से धन समाप्त हो जाता है। बैंक में से 5,000 का चेक निकाल दे तो 5,000 कम का बैलेंस दिखाई पड़ता है, लेकिन भक्ति के जीवन में जब आप देते हो तो ऐसी वृद्धि होती है तो आपको समझ में नहीं आएगा, अरे बाप रे कैसी वृद्धि हो गई हमारी, कभी प्लानिंग तो नहीं किया था, कभी इतना तो मेहनत तो नहीं किया था। लेकिन भगवान देते हैं, इसका अनुभव कीजिए आप, आपको बताता हूँ। इसलिए देने में संकोच मत कीजिए, जब देंगे हम तो भगवान आपको देंगे, सब उनका ही तो है। लेकिन वो जानकारी जो है कि उनका है और मैं सब नहीं दे रहा हूँ, कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, ये भावना भगवान को बड़ी अच्छी लगती है, वो प्रामाणिकता की भावना है ना। अल्टीमेटली आई एम नॉट गिविंग एवरीथिंग टू कृष्णा, मैं थोड़ा ही कुछ दे रहा हूँ अपना निकाल के, लेकिन भगवान मुझे और देने की इच्छा है। तो वो भावना से भगवान आपको देंगे और आप देते देने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना संग, अपना रिसोर्सेस, अपना पैसा भगवान की सेवा में लगाने के लिए संकोच मत करना। एकदम कहते हैं ना हमारी मुंबई की भाषा में, बिंदास दे देना बिना चिंता के, भगवान आपको कभी भी भुखा नहीं रखेंगे, कभी भी रोड पर नहीं लाएंगे आपको। भगवान बड़े दयालु हैं और सबके सच्चे हित चिंतक भगवान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपका किसी का? विद्या ही नष्ट हो जाएगी, भूल ही जाएंगे उसको आप।
तो आप देखते हैं कि जो भजनानंद जी आप होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, केवल भजन करते, तो उनकी स्थिति क्या होगी? मतलब
कठिन प्रश्न है बहुत। भजनानंदी अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है और उस समय भजनानंदी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा हमारा भजन टिकेगा नहीं। ऐसे ही हमारे मंदिरों में कई ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, बाद में होते हैं कि बहुत मैनेजमेंट से मैं अभी बहुत परेशान हो गया, अभी मैं ना बरसाने जाऊँगा और एक झोपड़ी में ना दिन रात जप करूँगा और शास्त्र का अध्ययन करूँगा जो मुझे करना था एक्चुअली। हाँ, मैंने खुद देखे उदाहरण ऐसे, बरसाने गए ऐसे मच्छर काटे तो भाग गए वहाँ से, और भाग जब गए और मंदिर में भाग के नहीं आए, अपने घर गए और पूरी तरह से वापस वही जीवन जीने लगे जो जी रहे थे पहले। एक तो पहले मेरे पास आए कि उनको पैर में इतना बड़ा घाव हो गया जो हिल ही नहीं हो रहा था, तो झोपड़ी में से मेरे पास आए दवाखाने वृंदावन में, मैंने कई दिन उनकी मरहम पट्टी किया, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, चले गए। क्योंकि जो भजनानंदी होते ना सही रूप में, जैसा आप बोल रहे हो, वो भजनानंदी बनने के लिए भी बहुत बहुत समय तक तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ पर बट जब दिन रात आप सेवा कर रहे हो ना, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, ऐसा है वैसा है, इतना काम रहता है, नींद नहीं मिलती, रहता है कि भी यार परेशान हो गया मैं, अभी मैं दिन भर जप करूँगा बस वृंदावन जाके 7 दिन, एक दिन में आपका जप समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। एक वहम है हमारे मन में कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो किसी को नाम के ऊपर इतनी रुचि हो गई कि वो लगातार, जैसे हमारे अकिंचन कृष्णदास महाराज थे प्रभुपाद के गुरु भाई, हाँ दिन रात जप करते थे वो, तो वो स्थिति में दिस इज फाइन। वो प्रभुपाद जी अपने हमारे गुरु महाराज कहते थे जब उनके साथ में रहा करते थे, कहते व्यक्ति कभी सोता हुआ नजर ही नहीं आता था, अब कितना भी 3 बजे देखो तो भी जप कर रहे हैं, 2 बजे उठो तो भी जप कर रहे हैं, 4 बजे तो भी जप कर रहे हैं, 1 बजे उठो नींद में पानी पीने के लिए तभी भी ये व्यक्ति जप कर रहा है। तो और गुरु महाराज व्हेन ही स्टेड विथ हिम, उन्होंने कहा कि कभी सोते हुए दिखाई नहीं पड़ा आदमी, ये इतना टेस्ट था उसको भगवान के नाम के जप में। तो वो स्थिति में कोई नुकसान नहीं है, अगर आपका मन इतना रथ हो गया है, कृष्ण रथ हो गया है, तो वो अलग स्थिति है। लेकिन हमारे तुम्हारे जो लोग अगर जंगल में जाके बैठ जाएंगे ना, 1 हफ्ते में लौट आएंगे और भी गलत जगह पहुंचेंगे फिर लौट के। हाँ, इसलिए प्रीमैच्योरली ये सब नहीं करना चाहिए। वो अगर राधा कुंड में निवास लोग करते हैं, अगर वो गुरु जी के आदेश में है तो उसको सुरक्षा है, अपने मन से चले गए हैं डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। शहर में बीच वेश्यावस्था में रहने से भी अधिक डेंजरस है अगर गुरु के आज्ञा बिना वहाँ जाएंगे तो। प्लीज़ आई एम सॉरी टू से दिस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है और आप खुद के मन से सोच के जाते हो कि मैं भी राधा कुंड के किनारे बैठ के भजन करूंगा, तो वो शहर में 4 नियम जहां तोड़े जा रहे हैं वहां पर रहने से अधिक डेंजरस है वो स्पिरिचुअली। इस चीजें ना बहुत प्रभु जी बहुत गहरी चीजें हैं, ये ऐसे अच्छा लगता है इसलिए करने से करना नहीं चाहिए, अच्छी बहुत चीज लगती है दुनिया में, लेकिन नहीं करना चाहिए ना उसको। हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, उनके आदेश में होगा तो ही एक माया के खिलाफ सुरक्षा कवच आपके ऊपर रहेगा और आप बचोगे। वृंदावन में भी अगर आप जाओगे बिना गुरुजी के आज्ञा से तो 3 दिन तक आपको परमिशन आ जा सकते हो, या अकेले जाओगे तो वहाँ शहर से भी अधिक ज़्यादा माया का प्रभाव वृंदावन धाम में होता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ उतनी प्रभावशाली माया भी होती है। जहाँ कृष्ण थे वहीं पर कंस था, वहीं पर पुतना थी, वहीं पर अशासुर था, एवरीथिंग वॉज देयर, ओनली दिल्ली में नहीं था कोई, उधर कोई नहीं था, पंजाब में जहाँ कृष्ण था वहीं पर सब लोग थे और सबका परिणाम ब्रजवासियों को भुगतना पड़ा है ना। तो खेल रहे हैं अचानक कोई रिश्वत उधार है, बाप रे लड़कियों के एबॉर्शन हो रहे हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण के धाम में भी अगर गुरु जी की छत्र छाया में नहीं रहोगे तो उधर भी माया आपको भयंकर नुकसान करेगी, और यहाँ जितना नहीं करेगी वहाँ उतना करेगी, याद रखना इस बात को। तो हर चीज़ वहाँ पर मल्टीप्लाइड होता है। तो राधा कुंड में रहना है गुरु जी की आज्ञा लो और गुरु जी को प्रेशर मत करो, आज्ञा दो आज्ञा दो आज्ञा दो आज्ञा दो, डोंट डू दैट, वो आपको सही समय पर आज्ञा देंगे। राधा कुंड ये बहुत ऊंची स्थिति है, उसके लिए जाओ दर्शन करो प्रणाम करो, 3 दिन से ऊपर रहना नहीं चाहिए। अगर आपने आप गए आप घूमने के लिए तो दर्शन करने के लिए, शास्त्र का प्रमाण है ये, मैं खुद 3 दिन का मैंने खुद निर्णय नहीं लिया है, शास्त्र में लिखा है 3 दिन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा रहना है तो गुरु जी की आज्ञा होगी कि ये सेवा करना है आपको, तो फिर आप रह सकते हो। यस माता जी, हरे कृष्णा, माइक्रोफोन देंगे तो अच्छा रहेगा उनको। हरी बोल।
मैं स्कूल में टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन जो मुझे आज की ये स्थिति है कि जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बच्चे ऐसे पढ़ते नहीं हैं, और पेरेंट्स को अगर हम बोलते हैं तो पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो अब जैसे सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट कराते हैं तो अब बात आती है रिविजन की, तो जैसे हम रिविजन करा रहे बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस कम्प्लीट हो गया।
बिल्कुल, जो पैसा किसी भी कंपनी में नौकरी के रूप में आपको मिल रहा है तो आपका एक होगा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा कि नहीं, जब आप नौकरी लेते हो तो आपको एक पर्चा मिलता है कि ये आपका काम है, ये आपको करना है। वो अगर हम नहीं करते हैं तो उसका कर्म हमको लगेगा ही लगेगा। वो पूरा नहीं करते हुए अगर पूरी तनख्वाह तो ले रहे हैं हम लोग ना, और उसका 70% काम कर रहे हैं 80% काम कर रहे हैं, तो 20% का कर्म हम भक्त होने पर भी हमको लगेगा ही, ये ध्यान रखना। हाँ, वो अगर स्थिति है आपकी ऐसी, आप प्रामाणिक हैं, आप अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, आपको करना चाहते हैं, लेकिन आप स्थितियों के अनुसार पॉलिटिक्स के अनुसार जो स्थिति बदल रही है उसे नहीं कर पा रहे हो तो एक बात अलग है। आप प्रयास अपना तरफ से कर रहे हो, आप दिल से काम चोरी नहीं कर रहे हो, आप मजबूर हो तो फिर भी आप ठीक हो, लेकिन आप स्थिति का फायदा उठा के बोला अच्छा ये 20% तो वैसे भी मैं कर सकती हूँ तो कर्म लगेगा। अल्टीमेटली किस पर डिपेंड है, ये आपकी चेतना पर डिपेंड है। आपकी चेतना अगर बोल रही है नहीं मुझे मेहनत करनी है, मैं पैसा ले रही हूँ तनख्वाह ले रही हूँ, मेरा फर्ज है, चाहे गवर्नमेंट का नौकरी कर रही हूँ या प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, खुद का बिजनेस है, लेकिन मैं अगर पैसा ले रही हूँ तो मुझे अपना सेवा करना है। क्योंकि वो कैसा है, आप सेवा कर रहे हैं तो आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आप सेवा के लिए तनख्वाह मिल रही है, अगर आप सेवा कम कर रहे हो तनख्वाह फुल ले रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा तनख्वाह आप ले रहे हैं उसका कर्म तो लगेगा ना आपको, वो परिणाम करेगा मति के ऊपर आपके, हाँ जरूर करेगा। इसलिए यू बी सिंसियर, यू ट्राई योर बेस्ट, दुनिया कुछ भी करने दो, आपको सिंसियरली प्रयास करना है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा करना, बाकी जो होता है वो भगवान के हाथ में, लेकिन आपको प्रयास तो करना चाहिए, और जितना हो सके उतना बुद्धि से काम लेते हुए अपने आप, तो शायद ज्योग्राफी पढ़ाते होंगे या मैथ्स पढ़ाते होंगे या ऐसा पढ़ाते होंगे वैसा पढ़ाते होंगे, वो करने के बाद हो सके तो उतना उसमें घुल मिल के आपको भगवान का नाम भी उनको देना है, भगवान के विषय में बात भी करना है, स्कूल के नियम के अंतर्गत बाहर जाके नहीं, हो सके उतना, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो बीच में भगवान के बारे में 2-4 लाइन बोल सकते हो आप, वो उसको विरोध नहीं करें कोई। वो जो गोली है ना आध्यात्मिक गोली, वो आपको शुगर कोटिंग करके देना है लोगों को, तब आपका जो प्रोफेशन भी यशस्वी हो जाएगा। अगर बहुत नामुमकिन चीज़ है तो प्रयास मत करना, लेकिन काम तो सिंसियरली करना है। हरी बोल। यस, और क्या प्रश्न है? लेते हैं हाँ,
तो झूठ बोलने की एनर्जी से और लगाते हैं, तो अगर जैसे बुद्धि की बात की जाए ब्रह्मा जी बोलते हैं
बाय हुक और क्रूक, मतलब ये नहीं कि झूठ बोल कर दो, हुक और क्रूक का मतलब क्या है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, उनको कलर तरह के एग्जाम्पल दे दो, तरह तरह के उनको ट्रिक्स निकालो, बट झूठ नहीं बोलना चाहिए।
जैसे
नहीं, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पैसे क्या मांग रहे हो, बुक के पैसे मांग रहे हो ना? मेरा ऐसा सुझाव है, जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, झूठ का सहारा मत लीजिए, प्लीज डोंट डू दैट। असत्य के आधार पर किया हुआ बढ़िया से बढ़िया काम भी असत्य के नींव पे होने पर असत्य का ही परिणाम देगा आपको। या तो आपकी उसको दोस्ती होनी चाहिए, आपके क्लासमेट होनी चाहिए वो, तो उसका आप प्रेम से ट्रिक करो और किताब ले लो, रिश्ता होगा। अनजान व्यक्ति को झूठ बोलेंगे तो उसका परिणाम कभी ना कभी तो होगा हमारे। जहां तक हो सके वहां तक भक्तों को ऑनेस्टली अपनी जिंदगी में व्यवहार करना चाहिए, काया वाचा मनी, मन से, जिह्वा से, शरीर से, जितना भी हो सके हमारा व्यवहार सत्य के रूप आधार पर होना चाहिए। उससे आप निश्चिंत होकर सो सकते हो, चिंता नहीं रहेगी, मैंने उसको आज ऐसा बुलाया, उसको मैंने ऐसा बुलाया, उसको मैंने ऐसा बोला था, इतना मेरा कलेक्शन हो गया, इतना मैंने बुक्स कर दिया, आपको शांति नहीं मिलेगा, स्थिरता रहेगी मन के अंदर आप। इसलिए मैंने भी ये जीवन में बहुत समय के बाद ये निर्णय ले लिया कि जो भी है सत्य के आधार पर जीवन जीना चाहिए, जितना हो सके उतना भी बोल्ड, और सत्य लोगों को बताने में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको संकोच हो रहा है इसके मैं कैसे बोलूँ उनको, इनको कैसे बोलूँ मैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरी है उनके कल्याण के लिए तो आपको कठोर सत्य में बोलने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। और डोंट वरी, अगर आप उस सत्यवादी बनना चाहते हो भगवान आपको सहायता करेंगे और वैसे आपको बुद्धि देंगे, आपको असत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे सत्य के आधार पर ही करना है, भगवान आपको वो दिव्य बुद्धि देंगे जिसपे आपको वो क्लुप्तियाँ, जो ट्रिक्स आपको पता चलेगी, जो सत्य बोलते हुए आप उसको कर सकते हो। बेसिकली आपको इच्छा है कि भाई को अक्रोक मैं भी कुछ भी बोल के मुझे गीता बात 50 करके आना है, तो फिर वो सही नहीं होगा। सत्य के आधार पर जाएंगे जिंदगी भर संतुष्ट रहेंगे आप। आपको 50 साल के बाद भी आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने झूठ नहीं बोला है, नॉट पॉसिबल, नींद में भी मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा होना चाहिए आपका स्थिति। क्योंकि वो भक्त का एक वो क्या कहते हैं कैरेक्टर है वो, इट इज़ अ इंटीग्रिटी ऑफ अ डिवोटी टू बी ट्रूथफुल। दुनिया सब झूठ बोलने वाली है समझो, एवरीबडी इज लायर इन द वर्ल्ड। कौन दुनिया में शादी करने के लिए भी कितना बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं दूल्हा दुल्हन के घर के लोग कि हो जाए एक बार, कितनी चीज़ें हम लोग दुनिया में करते हैं असत्य के आधार पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में सब लोग ऐसे ही। लेकिन भक्त का भेष पहनने के बाद में, भक्त बन तथा कथित भक्त बनने के बाद में, भगवान का नाम स्वीकार करने के बाद में, भक्तिमय जीवन को अपनाने के बाद में वही हम लोग करते जो दुनिया करते हैं, तो क्या हुआ, किधर परिणाम हुआ बताओ, चेंज किधर हो गया, वेयर इज द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? वी वॉन्ट टू सी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये आध्यात्मिक परिवर्तन का आंदोलन है। वी वॉन्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरीबडी, एकदम गहराई के सर पर हमको ये आध्यात्मिक परिवर्तन दिखना चाहिए जीवन में, तो हम कह सकते हैं कि भगवान का नाम हमें लग गया, उसका परिणाम हो रहा है हमारे भक्ति में जीवन का, परिणाम हमारे आत्मा पर हो रहा है, इतना आमूलाग्र बदल हो रहा है इसके अंदर। तो डोंट वरी, आपके किताब वितरण भी होगा, आपका फंड कलेक्शन भी होगा, सत्य के आधार पर चलो आप, निश्चिंत रह के चलो और बी बोल्ड। हाँ, बोलो कि हमारे मंदिर में पुष्प अभिषेक हो रहा है और हम लोग इतना इतना पुष्प अर्पण करने वाले हैं, आप देना चाहोगे प्लीज़ दीजिए, इसमें ये लाभ है। और अगर वो समझो नहीं देने को, मैं वो आपके मंदिर में मेडिकल कैंप हो जाएगा, नहीं नहीं अभी मेडिकल कैंप नहीं हो रहा है, पुष्प अभिषेक हो रहा है समझो ऐसा, तो फिर ठीक है मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं अभी वो 12 मई को मेडिकल कैंप भी होने वाला है, आप उसको दे दो ना, और वो लेके आप पुष्प अभिषेक लगाएंगे, तो शायद आप उस भक्त, उस व्यक्ति को आगे भक्त बनाने के जो संभावना है उसको अभी नष्ट कर रहे हो बाय वन एक्टिविटी, स्लाइट एक्टिविटी, स्लाइट डिविएशन, नॉट मच, बट यू आर प्रिवेंटिंग वन पॉसिबल डिवोटी फ्रॉम बिकमिंग डिवोटी। यस, ये माता जी को प्रश्न पूछना, फिर आपको भी माइक माइक। You tell the donor honestly what you are going to do. If you have a difficulty from law point of view regarding the money, tell donor very frankly कि ऐसे ऐसी स्थिति है, ये हम लोग मंदिर में मुश्किल करना है, लेकिन धन की जरूरत है, लेकिन करना पड़ता है। Be honest with them. यू आर ऑनेस्ट ना यू आर फाइन, यू चीट नो वन लाइक्स चीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड. बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड वर्स्ट पर्सन वर्ल्ड दे डोंट लाइक चीटिंग, सो बी ऑनेस्ट. प्रभु जी को दीजिए, प्रभु जी को माइक लीजिए, माइक. सो बी ऑनेस्ट एज फार एज पॉसिबल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर बींग दैट. हाँ प्रभु जी, उनकी क्या गति होगी? बहुत स्पेशल नरक बनेगा उनके लिए. वृंदावन के नाम पे अगर आप लोगों को चीटिंग कर रहे हो तो भगवान को भी एक अलग नरक बनाना पड़ेगा उसके लिए स्पेशल. उनको पता नहीं है कि वो दिल्ली में ऐसा करेंगे तो उनको एक एक प्रकार का दंड मिलेगा, वृंदावन में ऐसा करेंगे तो बाप रे बाप, लाखों करोड़ों गुना दंड मिलेगा उसका, एक उतने चीज का. यस, और किसी का प्रश्न? अभी प्रभु जी यू कैन डिसाइड नाउ होम टू गिव माइक्रोफोन, नहीं होम टू गिव फर्स्ट एंड होम टू गिव सेकंड. आई शुड नॉट अपियर पार्शल. हाँ, भगवान का जो नियंत्रण है वो आपकी स्वतंत्रता के ऊपर नहीं है. भगवान स्वतंत्र है और वो उतना इंडिपेंडेंस उन्होंने आपको भी दिया है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है. देखो, भगवान को इसमें उनके बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं कि उन्होंने उनको कैसा इंडिपेंडेंस दे दिया. वो आपको भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं. आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ही फर्क है उसके अंदर. क्या बोल रहे हैं?
दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी को सेवा कर रहा है लेकिन वो इतना रूडली बोल रहा है तो फिर बंधन लगा दिया जाता है. दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, उसको प्यार से खाली ब्रेन वॉश करके समझा देता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है. तो किसको कहेंगे, धर्म किसको कहेंगे?
जो जो दोनों के मन में, जो दोनों अलग प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, जितनी सिंसियरिटी प्रामाणिकता किसी के मन में उसके अनुसार परिणाम मिलेगा आपको. वक्ता कोई सुंदर वक्ता होगा, बहुत एकदम उत्कृष्ट वक्ता होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, वो अपने क्रूड ही विलेज तरीके से करता होगा. लेकिन अगर दोनों के मन में अगर प्रामाणिकता होगी तो परिणाम इक्वल होगा. तरीके से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली जो कहने वाला है उसकी चेतना क्या है उसके अनुसार परिणाम होता है लोगों के ऊपर. एक सुंदर वक्ता होने से आपका दिमाग प्रभावित होगा, आत्मा परिवर्तन नहीं होगा. हमको जरूरी है कि हम प्रामाणिक बने, हम कुशल ना होंगे, हकलाते होंगे बोलने में, हमको ज़्यादा श्लोक नहीं मालूम होंगे. लेकिन अगर हृदय में प्रामाणिकता होगी, सिंसियरिटी होगी, रियल करुणा होगी कि इनको बचाना चाहिए माया से, तो उसका परिणाम अधिक होगा. तो चेतना पर काम करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस. और आपके डांटने से बच्चे के मन में बहुत गहरा डर नहीं बैठना चाहिए. डांट की भी एक होती ना स्थिति होती ना, एक डांट होगी तो बांध जाएगा, दूसरी डांट से डर जाएगा, तीसरी डांट से रात को सोएगा ही नहीं, इतना डर लगेगा उसको, बिस्तर में पेशाब करेगा, रोज पेशाब करते रहेगा डर के मारे. तो आपकी डांट कौन से स्तर पर होनी चाहिए? उसकी समझदारी के लिए होनी चाहिए, डर पैदा करने के लिए होनी चाहिए. जब डर पैदा होगा उसके मन में परमानेंट टाइप का, तो वो हिंसा में उसका रूपांतर हो जाएगा. इसलिए बच्चे को बच्चे के कल्याण के लिए डांटो. आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए मत डांटो. कभी कभी बच्चे इतना गुनाह करते हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं, और क्योंकि हम लोग परेशान हैं, समझो स्कूल में कोई प्रिंसिपल ने हमको आज डांट के वापस भेजा है, घर में आके पति ने भी डांट दिया है, ऊपर से बच्चे ने पेंसिल किसी का चुरा के लेके आया है, तो आप उसको 10 बार मार रहे हो स्टिक से. एक ही बार मानना चाहिए, लेकिन आप किसी के लिए परेशान हो खुद. नहीं, बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ. कभी कभी आप स्वयं अस्थिर और अस्वस्थ होने की वजह से ज़्यादा डांटते हो बालक को, तो वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर. उसका कितना गलती है उतना उसको डांट मिलनी चाहिए. आप परेशान हो, आपको पति ने डांट दिया है, घर में कोई परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रही है, और बच्चा पेंसिल चुरा के आ रहा है, तो उसको फिर 10 गुना ज़्यादा पनिशमेंट या डांट मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब डांटने का समय आता है तो आपको उसके कल्याण के लिए समझते हुए उसको डांटना चाहिए, अपना एलिमेंट उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। समझ में आया? डर पैदा मत करना उसके मन में भयंकर टाइप का। और कोई नेक्स्ट प्रश्न किसका? हाँ हाँ जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वो अपने आप माया के प्रभाव से निकल जाता है। सिंपल, हमारे लिए शास्त्र में ये आदेश नहीं दिया है कि हमको माया के साथ जूझकर उसको नियंत्रण में लाना है, नहीं। हमारे लिए आदेश ये है, दैव येषु गुणमयी मम माया दुरात्यया, आपके बस में नहीं है वो, आप केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कर दूंगा आपका। तो भैया, अवर एफर्ट इज नॉट अगेंस्ट माया, और अवर एफर्ट इज नॉट अगेंस्ट कंट्रोलिंग माया, अवर एफर्ट इज टू जस्ट बी विथ कृष्णा, देन वी विल बी आउट ऑफ माया। हु आर वी इन फ्रंट ऑफ माया? प्रभुपाद जी 81 ईयर पे बोल रहे हैं माया से बचाओ। यस, और कोई प्रश्न है? कहाँ पर है? हाँ ओके, प्रार्थना करते रहो। बच्चा कैसे होता है, बोलता है मुझे पूरा बिस्किट चाहिए, पूरा पैकेट चाहिए, आप नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा? मांगते रहेगा कि नहीं? टिल यू गिव, वो रोते रहेगा, आपको देने को मजबूर करेगा वो। वैसे आपको अभी आज बोलेंगे मुझे काम वासना से मुक्त कर दो, ये धन की लालसा से मुक्त कर दो, और कल सुबह आएंगे धन लालका से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना। कुछ कुछ मांगे तुरंत पूरी की जाती है, कुछ कुछ मांगे बहुत समय लगता है उसको। हे भगवान मुझे टीबी से ठीक कर दो, तो वो 2 साल का ट्रीटमेंट है उसका। 2 साल के बाद ठीक हो जाएगा। उसी तरह से प्रार्थना करने में मतलब थक मत जाना, करते रहना, जब तक मिलता नहीं तब तक पूछते रहना, अभी ऐसा जबरदस्त जोर जबरदस्ती नहीं, नम्रता से, पेशेंटली, उत्साह और क्या कहते हैं, उत्साह और संयम, है ना, उत्साह से प्रार्थना करते रहना और संयम भी रखना कि देर लगेगी, बी पेशेंट। और किधर हो आप? हाँ यस प्रभु जी, हाँ तो प्रश्न क्या है? हाँ जीना आपको वर्तमान में चाहिए, भूतकाल से आपने जो सीखा है वो आपके आज के साथ में होना चाहिए, और भविष्य के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपकी सेवा में रहूं। किस मंदिर में आप रह रहे हैं इसके ऊपर आपका सेवा डिपेंडेंट रहता है, आपको गुरुजी जहां भेजेंगे वहां पर आपको जाना है, शायद मंदिर में नहीं भेजेंगे, किसी शहर में भेज देंगे भाई प्रचार शुरू करो वहां पर जाके, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न आपका होना चाहिए जहां कहीं भी रहूं गुरुजी की आज्ञा में रहूं, ये भविष्य के लिए प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। और वर्तमान में जो आपको सेवा मिली है वो आपको हृदयपूर्वक उस आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करते रहनी चाहिए, और भूतकाल में जो भी हुआ है उससे आपको सीखना चाहिए कि क्या हुआ और क्या गलती हुआ और क्या अच्छा हुआ, उसका निचोड़ जो है वो हृदय में अनुभूति के रूप में होना चाहिए। वी कैनॉट बी टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर एंड पास्ट। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है, भूतकाल के आत्म साक्षात्कार को लेकर और भविष्य के लिए भगवान की भक्ति की इच्छा करता है, वो व्यक्ति सफल होता है। लास्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट सबसे पहले आपका कोई आध्यात्मिक गाइड होना चाहिए, वह है। उसके बाद में उनके साथ चर्चा करते रहना चाहिए और आपकी आज की स्थिति में, रिटायरमेंट की स्थिति में, आज के शरीर की स्थिति में, मन की स्थिति में, जो भी कुछ आपकी स्थिति है उसके अनुसार उनका गाइडेंस लेके आपको चलना चाहिए। किस चीज का भय? अगर आप प्रामाणिक गुरु के शरण में हैं और प्रामाणिक गुरु जो भगवान की भक्ति में आपको आदेश दे रहे हैं उसका आदेश आप हृदय से पालन कर रहे हैं तो आपको फिर पुराने अपराधों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में कैसे, अगर आप शुद्ध भक्तिमय मार्ग पर हो हर क्षण इसके आगे, तो फिर पिछले सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध भक्ति मार्ग का लक्षण पहला क्या है, क्लेशाग्नि। क्लेश क्यों होते हैं? पुराने कर्मों के द्वारा। तो क्लेशाग्नि क्यों होता है? क्योंकि पुराने कर्म सब जल जाते हैं। लेकिन आपको आज से अंत तक रिटायरमेंट के काल में वो प्रामाणिक गुरु के आदेश में पालन करते हुए रहना चाहिए, तब ये भय नष्ट हो जाएगा। जब आप शरणागत हो जाओगे, शरणागत का प्रथम लक्षण है वो भय मुक्त हो जाता है। सदुपयोग भगवान की भक्ति में होता है, सदुपयोग जनता की सेवा में नहीं होता है, समाज सेवा में नहीं होता है। समय का सदुपयोग केवल भगवान की सेवा में ही हो सकता है और वही प्रमाणित है और उसी को भगवान नोट कर लेते हैं। एक माता जी ने लास्ट वो हाथ पर किया था, आपको इधर किसको पूछना है प्रश्न इधर? यस माता जी, हमसे क्या होती है? हाँ, भगवान के नाम में और भगवान के सेवा में जो भी स्वाद आपको आ रहा है वो केवल उनकी अकारण भेंट है आपके लिए, आपके कष्ट का परिणाम नहीं है वो, आपकी साधना का परिणाम नहीं है। साधना तो हम करते हैं, केवल नियम पालन करते हैं उसका। लेकिन हमको अगर हम समझने लगेंगे कि मैंने 10 साल साधना किया है, 20 साल साधना किया है, इसलिए आज मुझे इतना स्वाद मिल रहा है, ये अगर समझेंगे तो वो गलत है। और स्वाद का मिलना या ना मिलना भक्ति के माध्यम मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं आपको कि मुझे उतना स्वाद आ रहा है कि कल आ रहा था आज नहीं आ रहा है, क्या अपराध हुआ क्या। आप अपना रोज का जो सेवा है, भगवान का जो नियम है, उसको रोज करते रहिए। भगवान को जब स्वाद देना है तब वो देंगे, जब निकाल लेना तो निकाल लेंगे। आप उसमें अटैच मत रहना, ज़्यादा सोचना मत क्योंकि अरे कल तो इतना सब में आनंद आया तो आज नहीं आ रहा है। वो साधना भक्ति का लक्षण है, साधना भक्ति के सर में आज आता है कल नहीं आता है। शास्त्र में लिखा है, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि साधना भक्त जो होता है उसको हर रोज दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब भगवान की इच्छा होती तभी मिलता है, जब कभी उसकी तकदीर होते मिल जाता है, लेकिन उसके वजह से उसको ऊपर नीचे होने की कोई जरूरत नहीं है। उसका काम है कि उसकी साधना में स्थिर रहना, स्टेडी रहना, ये उसका काम है। स्वाद न भी आया हो तो क्यों नहीं आया ये सोचने के बदले में आपका जो नियत कर्म है, आपका नियम तो कर्तव्य है, उसको आप करते रहिए। आपको जो साधना दिया है वो रोज करते रहिए। क्योंकि हम सब लोग अभी भी, आपको लगता होगा कि हम साधना किया है इतना स्वाद आ रहा है वगैरह, वो सब हम लोग साधना के स्तर पर ही है, हम लोग कोई भाव भक्ति के सर पर नहीं है। ये हमको मन में फिक्स होना चाहिए। अगर हम भाव भक्ति के स्थिति में है भी तभी भी हमको सोचना चाहिए कि मैं भाव भक्ति में नहीं हूं, ये सुरक्षित भावना है हमारे लिए। हाँ, टू फील दैट आई एम डूइंग माय साधना। इवन इफ हम लोग भाव भक्ति में पहुंच गए, प्रेम भक्ति तक पहुंच गए, लेकिन आप प्रेम भक्ति में पहुंचे हुए मिल रहे हो, लोगों का वर्णन सुनिए इसके अंदर, बोलते भगवान मैं इतना दीन हूं, इतना पतित हूं, आप बोलेंगे क्या है, साधना भक्त है कि भाव भक्त है ये? लेकिन सीखना यह है कि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर जाने के बाद भी भक्त अपने आप को पतित समझता है, उस भाव के योग्य नहीं समझता है जो उसको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमने यमुना माता जी को देखा है अपनी आंखों से, और सब शास्त्रों के अनुसार पढ़कर समझ सकते हैं कि माता जी भाव भक्ति स्टेज पर है, हम जानते थे। लेकिन जब भी वो बोलती थी, बोलते मुझे बहुत इंप्रूव करना है लाइफ में, देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि इन सब चीज़ों पर मुझे लाइफ में प्रगति करनी बाकी है अभी भी, ये मुझे बढ़ाना है जीवन में, तो बोले माता जी तो बहुत पतित है अगर इस पर काम कर रही है, वो उसकी नम्रता है, वो सोच रही है कि नहीं हूँ मैं ऐसी, मुझे और आगे बढ़ना है, मैं बहुत पतित है। इसलिए ये जो है ना, ये इसमें भी एक कर्मकांड का ऐसा भाव है, मतलब मैंने 30 साल साधना किया है तो मुझे इतना भाव प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या। ये सोचना भी एक कर्मकांड है, बिजनेस है। हम चाहे 1000 साल साधना करेंगे तो भी हम भगवान के प्रेम के योग्य नहीं है, ऐसे हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए। तो ऐसे जो समझता है ना कि मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, उसी को भगवान योग्य बना देते हैं। और आप खुद की साधना पर खुद को योग्य समझने लगेंगे तो हम बिल्कुल अयोग्य हैं, दैट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। डोंट वरी, जस्ट चैंट हरे कृष्णा।